नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यं श्रीचैतन्यमहाप्रभुं नीचोऽपि यत्प्रसादात् साद्भक्तिशास्त्रप्रवर्तकः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतीर्तितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससोऽनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वभक्तपक्षपातेन तद्विपक्षविदारणं नृसिंहम् अद्भुतं वन्दे परमानन्दं विग्रहम्। अन्तः कृपासुधापूर्णो बहिः क्रोधो निकेसरी दैत्येन्द्रमरिभावेन भजन्तं समभावयत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक पलंगन अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिन्दु सरसि तं कालं प्रतिपालयन्। अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिन्दु सरसि तं कालं प्रतिपालयन्। तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 35 नंबर का श्लोक है। अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिन्दु सरसि तम कालम प्रतिपालयन। हरे कृष्ण। अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषिः आस्ते स्म बिंदु सरसि तम कालम प्रतिपालयन। अथ तब शुक्ले विशुद्ध सत्यमूर्ति भगवान के संप्रस्थिते चले जाने पर भगवान भगवत भक्त कर्दम ऋषि ऋषि तम कालम भगवान द्वारा निर्दिष्ट काल परसों दिन की प्रतिपालयन प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरसी बिंदु सरोवर स्थित आस्तेष्म अपने आश्रम पर रुके रहे। हम लोग कल कर्दम मुनि के उज्ज्वल चरित्र का श्रवण कर रहे थे। कर्दम मुनि भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के आज्ञा से श्री भगवान के प्रसन्नता हेतु तप करने के लिए गए और बहुत कठिन तपस्या किए। 10,000 वर्ष तक भगवान के लीलाओं का चिंतन, उनके महत्वपूर्ण गुणों का स्मरण और उनके श्री विग्रह का पूजन इत्यादि करते रहे। परिणाम स्वरूप श्री भगवान उनके सामने प्रकट हुए। श्री भगवान के आने पर कर्दम मुनि निष्कपट भाव से अपने भजन के उद्देश्य को सामने रखे। यद्यपि भजन करते करते कर्दम जी का चित्त बिल्कुल पवित्र हो चुका था, संसारिक विषयों की कोई लालसा नहीं थे। वास्तव में हृदय की सबसे बड़ी गंदगी संसारिक वस्तुओं की कामना है। जब तक चित्त में ये सब विषय भोग की गंदगियाँ रहती हैं, तब तक श्री भगवान का स्मरण और भजन नहीं हो पाता। श्री चैतन्य महाप्रभु चित्त की तुलना, हृदय की तुलना दर्पण से किए हैं। जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में सामने के वस्तु प्रतिबिंबित होता है, वैसे गंदे दर्पण में नहीं होता। अगर दर्पण के ऊपर धूल पड़ गया हो, कालिख जम गया हो, तो सामने का चित्र प्रतिबिंबित नहीं होता। अगर हम अपना फेस देखना चाहें तो साफ नहीं दिख सकता, तब उस दर्पण को साफ करना पड़ता है, रुमाल से उसके धूल को पोंछना पड़ता है, या उसमें कुछ कालिख आदि लग गया हो तो और पानी आदि डालकर सफाई करना पड़ता है, या कतरा आदि जम गया हो तो कुछ लिक्विड केमिकल डालकर साफ करना पड़ता है। अलग अलग सफाई का ढंग है। उसी प्रकार चित्त भी एक दर्पण है और इसकी गंदगी धूल नहीं है, इसकी गंदगी है संसार के विषय भोगों की लालसा। संसार भोग की जो कामना है वही चित्त की गंदगी है। तो इस गंदगी को दूर करने का उपाय है भगवान की भक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट रूप से कहते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चित्त रूपी गंदगी को साफ करने के लिए सबसे सफल और सबसे उत्कृष्ट साधन है, उपाय है नाम संकीर्तन। तो भगवान की भक्ति करते 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 करदम जी का चित्त बिल्कुल स्वच्छ हो गया था, साफ हो गया था। उनके चित्त में केवल भगवान स्मृत हो रहे थे, स्पष्ट प्रतिबिंबित हो रहे थे। फिर भी अपने पिता के आज्ञा से जगत के सृष्टि विस्तार को सामने प्रस्तुत किए, भगवान से निष्कपट भाव से अपनी मन की बात कहे कि हम पिताजी की आज्ञा पालन करना चाहते हैं, हमारे अनुरूप, हमारे शील स्वभाव के अनुरूप हमको पत्नी चाहिए जिसे हम पिता की आज्ञा पूरा कर सकें और आपका भजन भी कर सकें। तो श्री भगवान बहुत प्रसन्न हुए और करदम जी को बताए कि आज के तीसरे दिन, यानी एक दिन बीच में गैप है, परसों दिन संपूर्ण भूमंडल के एकमात्र सम्राट स्वयंभू मनु अपनी बेटी देहूती को लेकर आपके पास आएंगे और देहूती आपके गुणों को सुनकर अपना मन बना चुकी है आपको पति बनाने के लिए, तो आप उसको स्वीकार कर लीजिएगा। और उसी क्रम में श्री भगवान ने यह भी कहा कि आप देहूती से 9 कन्याएं प्राप्त करेंगे जो महान प्रजापतियों की पत्नियां होंगी और जिनके संतान से यह जगत भर जाएगा, और 10वें संतान के रूप में स्वयं मैं आपका पुत्र बनकर आऊँगा। ये सब बातें सुनकर करदम जी बहुत संतुष्ट थे, प्रसन्न थे। और मनु महाराज के आने का इंतजार कर रहे थे, तो श्री भगवान उनको इस प्रकार संकेत करके, उपदेश करके चले गए। तो उनके जाने के बाद अब एक प्रसंग प्रारंभ होता है, आगे क्या होता है। तो भागवत में जहाँ नया प्रकरण प्रारंभ होता है वहाँ अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब करदम जी आगे क्या करते हैं इसको कहते हैं, अथ संप्रस्थिते शुक्ले करदमो भगवान ऋषि आस्ते स्म बिंदु सरसी तम कालम प्रतिपालयन। तब मतलब कब, सत्यमूर्ति श्री भगवान के लिए शुक्ल शब्द कहा गया है, शुक्ले संप्रस्थिते। श्री भगवान सत्य स्वरूप हैं, विशुद्ध सत्व हैं। संसार में जो प्राकृत जगत में गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, वो प्राकृत है, वो बंधनकारी है, लेकिन भगवान है विशुद्ध सत्व, प्राकृत सत्व उनमें नहीं है। प्रकृति के गुणों से भगवान प्रभावित नहीं होते, इसलिए उनको निर्गुण कहते हैं। और ऐसे निर्गुण भगवान को शुद्ध सत्व मूर्ति कहते हैं, शुक्ल, एकदम स्वच्छ, धवल, एकदम साफ, कोई दाग नहीं। विशुद्ध सत्व मूर्ति भगवान के चले जाने के बाद भगवान करदम ऋषि तम कालम प्रतिपालयन, सर्वसमर्थ करदम, करदम के लिए भगवान कहा गया है, भगवान ऋषि करदम, समर्थ ऋषि, जो इंद्रियों को बिल्कुल कंट्रोल करके रखते थे, जितेंद्रिय थे, ऐसे करदम मुनि उस काल का इंतजार करने लगे जिसको भगवान कह कर गए थे। परसों दिन का इंतजार कर रहे हैं। बिंदु सरसी आस्तेष्म, बिंदु सरोवर अपने सुप्रसिद्ध आश्रम पर रहने लगे। भगवान के अभी आगे वर्णन होगा कि बिंदु सरोवर क्यों कहा गया है, उनके आश्रम को बिंदु सरोवर क्यों कहा गया। मनु महाराज जब आ रहे हैं तो उनके आगमन का वर्णन करते हैं मैत्रेय मुनि, किस रूप में मनु महाराज उस आश्रम का दर्शन कर रहे हैं। मनु महाराज के साथ हम लोग भी बिंदु सरोवर में स्थित करदम मुनि के आश्रम का दर्शन करेंगे। उनके स्वभावों का वर्णन बहुत स्पष्ट रूप से मैत्रेय मुनि करते हैं। मनु श्यनंदनम आस्थाय सात कौंभ परिच्छदम आरोप्य स्वाम दुहितरम सभार्य पर्यटन महिम। सभार्य मनु सात कौंभ परिच्छदम यशनंदनम आस्थाय। अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ, सभार्य अपनी भार्या के साथ, भार्या जिसका भरण करना कर्तव्य है पति का उसको भार्या कहते हैं, जिसका भरण किया जाता है माने पत्नी। अपने पत्नी शत्रुपा के साथ मनु महाराज सोने के चमचमाते हुए रथ पर चढ़कर स्वाम दुहितरम आरोप्य और अपनी बेटी को भी साथ लेकर महिम पर्यटन पृथ्वी में घूमते हुए चल रहे थे। मनु महाराज अपने भवन से निकले हैं, राजधानी से, तो उनके चलने का वर्णन मैत्रेय मुनि करते हैं कि खूब सुंदर सोने का चमचमाता हुआ रथ है। सात कौंभ परिच्छदम यशनंदनम आस्थाय। सोने के विमान नहीं है, रथ है, उस पर चढ़कर यशनंदन है रथ। रथ बहुत सुंदर धातुओं से बना है, मुख्य रूप से सोना लगा है उसमें, उनके चक्का रथ के और भी जो जो बैठने का स्थान सब कुछ सोने का था, बहुत सुंदर चमक रहा था। उस पर अपनी पत्नी शत्रुपा और अपनी बेटी देहूति को लेकर मनु महाराज पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकल गए, निकल रहे हैं। पर्यटन महिम, पृथ्वी का पर्यटन करते हुए चल रहे हैं। तस्मिन् सुधन्वन् अहनि भगवान् यत् समादिशत् उपादायादाश्रम पदम् मुने शांत व्रतस्य तत्। सुधन्वन्, सुधन्वन् संबोधन है विदुर जी के लिए। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे महाधनुर्धर विदुर, आप कौरवों के प्रधानमंत्री रहे हैं, धनुष चलाना, रथ पर चलना आपके लिए स्वाभाविक है, आपको अनुभव है। कभी कभी राजा के साथ मंत्री लोग भी घूमते हैं रथ पर सुंदर धनुष लेकर। तो सुंदर धनुष महाधनुर्धर हे विदुर, यत भगवान समादिशत तस्मिन् अहनि शांत व्रतस्य मुने तत् आश्रम पदम उपायात। जो दिन भगवान निश्चित किए थे कर्दम मुनि के लिए, कहे थे कि मनु महाराज आएंगे परसों दिन, ठीक उसी दिन, तस्मिन् अहनि उसी दिन शांत व्रतस्य मुने। शांत व्रतस्य का मतलब उपशमशील मुनि, किसी प्रकार के भोगों की लालसा जिनके मन में नहीं है उनको शांत कहते हैं। ऐसा नहीं कि अपने आश्रम पर बस दिन रात यही चिंतन करते, नींद भी नहीं लग रही है, कब मनु महाराज आएंगे अपने बेटी को लेकर, कब आएंगे, कब हमारा विवाह होगा, यह नहीं। इनके लिए कहते हैं शांत व्रतस्य। शांत जानते हैं कि इनको कहते हैं जिनके मन में कोई कामना न हो वो शांत है, जिसके मन में बहुत सी लालसा हो, योजना है, वो अशांत है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। चैतन्य चरितामृत में शांत और अशांत की परिभाषा है। जिसको आईएएस कंप्लीट करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसको कैसे शांति मिलेगी, उसको तो रात भर पढ़ना पड़ेगा, सारी दुनिया सोता है और वे लोग कंपटीशन तैयार करते हैं, बड़े बड़े पोथा लेकर बैठते हैं, पढ़ते हैं दिन रात, लैपटॉप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, देखते रहते हैं कंप्यूटर में क्या है कहाँ है, सारी दुनिया का खबर चाहिए, अखबार पढ़ते हैं, तरह तरह के विचारों में लगे रहते हैं, उनकी तैयारी करना पड़ता है, वो कहाँ शांत है। जिनको बहुत धन कमाना है, भुक्ति की लालसा है, भुक्ति में भोग चाहिए, फर्स्ट क्लास घर चाहिए, दिल्ली में, न्यूयॉर्क में, मुंबई में मकान चाहिए, तो पैसा चाहिए ना, तो इसके लिए बड़ा बड़ा बिजनेस, बड़ा बड़ा कंपनी चालू करेंगे। भुक्ति, भुक्ति और मुक्ति, जिनको मुक्ति चाहिए उनको तपस्या करना पड़ेगा तब मुक्ति मिलेगा, भुक्ति मुक्ति और सीधी चाहिए, चमत्कार दिखाना है, कभी बड़ा हो जाना है, कभी छोटा हो जाना है, कभी कुछ कर देना है, कभी आग बरसा देना है, कभी बारिश कर देना है, कुछ भी। तो इस सिद्धि के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। एक संत थे, वैष्णव संत, उनके पास कोई सिद्ध आया एक बार, तो गंगा के तट पर वो भजन करते थे। आया तो आकर के कहा कि महाराज हमने 40 वर्ष में एक सिद्धि प्राप्त की है तपस्या करके। क्या? तो मैं इस गंगा जल पर बिना नौका के पैदल चल जाता हूँ, जैसे भूमि पर स्थल पर चलता हूँ वैसे गंगा के जल पर भी चलता हूँ। हे अच्छा, तो बहुत बहुत बड़ी सिद्धि है। तो वैष्णव थे, उनके मन में तो इस सिद्धि का कोई वैल्यू था नहीं। तब तक एक ग्वाला आया महात्मा के यहाँ दूध देने के लिए, गंगा पार से आया, गंगा पार करके, बहुत पहले की घटना है। तो पूछे, ग्वाला तुम कैसे गंगा पार करता है? तो नौका से। अच्छा, कितना पैसा लगता है? 5 पैसा आने में, 5 पैसा जाने में, बहुत पहले की बात है। 10 पैसा में तुम गंगा पार कर जाते हो, आ जाते हो, चले जाते हो। तो अच्छा, केवल 10 पैसा में? हाँ। अरे महात्मा जी तो उस 10 पैसा के लिए 40 वर्ष बर्बाद कर दिए। जो काम 10 पैसा से हो सकता है उसके लिए 40 वर्ष लगाने की क्या जरूरत है? देख लिए, हमारा ग्वाला 10 पैसा में गंगा पार करता है, आता है, और उसके लिए आप 40 वर्ष बर्बाद कर दिए। सिद्धि के लिए व्यक्ति बेचैन रहता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो होगा देखा जाएगा। भक्त लोग भगवान का भजन करते हैं और किसी भी परिस्थिति में शांत रहते हैं। भगवत इच्छा से जो होगा भगवान की कृपा है। तो इस प्रकार उस शांत व्रतस्य, कर्दम मुनि शांत व्रत के थे, उनको किसी प्रकार भोगों की लालसा नहीं थी, कोई कामना नहीं थी। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, शांत व्रत के थे। तो उनके आश्रम, प्रसिद्ध आश्रम में मनु महाराज आए। तो आश्रम के परिचय देते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं, जस्मिन भगवतो नेत्रान न्यपतन अश्रुबिंदव कृपया संपरीतस्य प्रपन्न अर्पितया भृशम। प्रपन्ने भृशम, जहाँ कर्दम जी जिस आश्रम पर बड़ी प्रसन्नता के साथ निवास कर रहे थे, बड़े आनंद से, सुख से, वहाँ भगवतः नेत्रात अर्पितया कृपया संपरीतस्य, जब कर्दम मुनि निष्कपट भाव से अपने हृदय की बात कह दिए कि हे भगवान, मेरे अनुरूप जैसा मेरी योग्यता है, जैसा मेरा स्टैंडर्ड है, उसके अनुसार मुझे पत्नी की व्यवस्था कीजिए। देखिए, पति पत्नी की सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है उसके विचारों को मिलना। ये शारीरिक सुंदरता, धन वैभव पति पत्नी की योग्यता नहीं है। जहाँ एक विचार मिले तभी निर्वाह हो सकता है जीवन में। विचार में अगर वैषम्य है तब तो डाइवर्स निश्चित है, तलाक निश्चित है। विचार एक हो गया तो गरीबी अमीरी सुख दुख सब में रह जाएंगे एक साथ। पत्नी को पति से कोई अपेक्षा नहीं, जिस परिस्थिति में है वैसे रहूंगी, और पति को भी कोई अपेक्षा नहीं, जैसा प्रारब्ध ने हमको पत्नी दिया उसी में संतुष्ट। वो प्रारब्ध से अपना कर्म फल है। दूसरे के धन, दूसरे की पत्नी, दूसरे का जस देखकर सिर फोड़ने से कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से विचार एक होना चाहिए। तो कह रहे हैं हमारे शील, हमारे स्वभाव के अनुरूप पत्नी चाहिए, यह उनका मांग था। तो इस निष्कपट मांग से, जिसके कारण हम भगवान का भजन कर सकें, यह सुनकर भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गया। नेत्रों में अश्रु बिंदव, आँखों में आंसू आ गया। भगवान को ऐसा लगा कि एकदम गिर जाएंगे, इसलिए उन्होंने गरुड़ जी को पकड़ लिया। गरुड़ जी के कंधे को पकड़कर भगवान अपने को संभाले स्खलन परिहार के लिए, लेकिन उनके आँखों से गिरने वाला बिंदु धरती पर गिर गया। और बिंदु जब गिरा तो जस्मिन न्य पतत तत्वई बिंदु शरणाम, कहते हैं कि इसलिए वही बिंदु शरणाम से प्रसिद्ध हुआ। सरस्वत्या परिप्लुत पुण्यम शिवामृत जलम, आगे कहते हैं तद्वई बिंदु सरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम पुण्यम शिवामृतम जलम महर्षि गणसेवितम। तो भगवान के आंखों से जो प्रेमाश्रु निकला, जैसे प्रेम सरोवर का निर्माण हुआ है, राधा रानी के गांव बरसाना के निकट प्रेम सरोवर है, वहां की कथा है कि एक बार श्याम सुंदर सखियों से अविष्ट बैठे हुए थे राधा रानी के साथ, ललिता विशाखा आदि सभी सखियां थी, और एक मधुकर एक भौंरा श्रीमती राधा रानी के जो अंगों से सुगंध निकलता था मुख रूप से उनके मुख मंडल से, तो एक भ्रमर जो मधुकर है पुष्पों का रस लेता है और राधा रानी के कपोल पर गाल पर बैठना चाहता था बार बार, और वो आता था भ्रमर गुनगुनाता हुआ बार बार, तो भगवान अपने हाथों से उसको हटाते रहते थे, बार बार हटाते, लेकिन वो भ्रमर राधा रानी के केशों से इधर उधर घूमता हुआ बार बार उनके गाल पर बैठना चाहता था, तो बार बार हटा रहे थे तब तक भगवान के सखा मधुमंगल आदि देख लिए कि बड़ा परेशान हो रहे हैं श्याम सुंदर भ्रमर को हटाने में, तो अपने उत्तरीय से उस भ्रमर को हटाते हुए भगाते हुए दूर ले गया, कुछ दूर ले गया वन में, दूर ले जा करके हटा दिया भगा दिया। तो उधर से आकर कहा श्याम सुंदर अब माधव चला गया, अब निश्चिंत रहिए, माधव मधुकर को कहते हैं जो मधु का रस लेता है, जो पुष्प का रस लेता है, अब मधुपति चला गया या माधव चला गया ऐसे कुछ कहा। तो मधुपति चला गया यह सुनते ही राधा रानी एकदम बेहोश हो गई, जबकि वो उनके साथ में आलिंगित हैं, भगवान अपना बाया हाथ श्रीमती राधा रानी के कंधे पर रखे हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी को शब्द सुनते ही बेहोश हो गई कि श्याम सुंदर अचानक चले गए, भूल गई कि मैं उनके साथ बैठी हूँ, और एकदम बेहोश हो गई और बहुत रोने लगी, इतना अजस्र आंसू विसर्जित होने लगा, रोने लगी, और श्याम सुंदर अपने गोद में लिए हुए राधा रानी को समझा रहे हैं, अरे प्रिय मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्यों रो रही, हा प्रियतम हा श्याम सुंदर आप मुझे छोड़कर चले गए, हाय हाय करने लगी, और श्याम सुंदर समझाने लगे, वो समझ ही नहीं पा रही थी, महासमाधि में डूब गई और बहुत रो रही थी, उनके रोने को देख कर श्याम सुंदर भी रोने लगे, समझाते समझाते रोने लगे। कभी कभी कोई व्यक्ति महान दुख में हो जाता है तो स्थिर ज्ञान वाला विद्वान भी समझाते समझाते रोने लगता है, अगर किसी के जवान बेटा की मृत्यु हो गई हो और वो रो रहा है या उसकी माँ रो रही है, तो कितना हो बुद्धिमान, कितना हो ज्ञान संपन्न महात्मा भी, स्थिर हृदय वाला भी अगर समझाने का कोशिश करे कि संपूर्ण जगत का यही स्वरूप है, कोई यहाँ जी अमर नहीं है, सब मरेगा एक न एक दिन, शास्त्र की बातें सब समझाएगा, ये शरीर नश्वर है, आत्मा नित्य है, सारा गीता का ज्ञान खत्म हो जाता है। उस बात्सल्य के प्रवाह में जो माँ रोती है बेटे के लिए, उसको समझाने में ज्ञानियों का ज्ञान बह जाता है और खुद रोने लगता है। तो ऐसे भगवान रोने लगे और दोनों राधा कृष्ण के रोने से इतना अश्रु विसर्जित हुआ कि वहाँ उनके आंसू से एक कुंड बन गया जल का, वही कुंड है प्रेम सरोवर। तो ठीक उसी तरह भगवान के अश्रु विसर्जन से सरस्वती नदी के पावन स्थल पर बिंदु गिरा है जहाँ वो तपस्या करते थे, और उस बिंदु के गिरने से उस जगह का नाम हो गया बिंदुसर, वह सरोवर जहाँ भगवान का प्रेमाश्रु गिरा है। तो कहते हैं जस्मिन भगवतो नेत्रान न्य पतत अश्रु बिंदव कृपया संपरितस्य प्रपन्ने अर्पितया भिषम तद्वै बिंदु सरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम पुण्यम शिवामृतम जलम महर्षि गण सेवितम। वही महर्षियों के द्वारा सेवित बिंदु सरोवर जहाँ बड़े बड़े साधु महात्मा पुण्य अर्जन के लिए जाते हैं, जहाँ साक्षात भगवान के आंखों का प्रेमाश्रु घिरा है, तो उस पवित्र स्थान पर बड़े बड़े संत महात्मा रहा करते थे। तो उस स्थान पर मनु महाराज पहुंचे। तो एक विशेष बात इस संदर्भ में आचार्यों का कहना है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के आंसू में और भगवान में कोई भेद नहीं है। जैसे भगवान के देह और देही में, आत्मा और देह में भेद नहीं, वैसे जैसे भगवान के चरणों का धोवन गंगा जी के रूप में विख्यात है, वैसे ही भगवान के अप्राकृत नेत्रों से गिरे हुए अश्रु बिंदु समूह बिंदु सरोवर के नाम से विख्यात है। इसलिए महर्षियों का समुदाय बिंदु सरोवर में शुद्धता प्राप्त करने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए वहाँ आते हैं और उस जल का सेवन करते हैं। तो और मनु महाराज के साथ वहाँ के सौंदर्य देखिए। पुण्य द्रुम लता जालई कूजत पुण्य मृग द्विजयी सर्वर्तु फल पुष्पाड्यम वनराज श्रियान्वितम। वहाँ के पवित्र वृक्षों और लताओं के समूह में कलरव करते हुए पक्षियों का ध्वनि सुनाई देता है और पवित्र पक्षी भी पवित्र हैं, बहुत सुंदर कलरव कर रहे हैं, खुशी में कुंज रहे हैं। और पशुओं से संपन्न उज्जत पूर्ण मृग द्विजयी, मृग कहते हैं पशुओं को और द्विज कहते हैं पक्षियों को। द्विज द्विज माने दो बार जन्म लेने वाले। द्विज ब्राह्मणों को भी कहते हैं और पक्षियों को कहते हैं, क्योंकि पक्षी का दो बार जन्म होता है, एक बार अंडा के रूप में और फिर अंडा फोड़कर बाहर पक्षी के रूप में। तो दो बार जन्म लेने के कारण पक्षी को द्विज कहते हैं और ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। ब्राह्मण का एक जन्म होता है माता पिता के द्वारा माता के गर्भ से, और दूसरा होता है गुरु के द्वारा संस्कार देने पर। जब वो जनेऊ संस्कार होता है तब उसका दूसरा जन्म होता है। इसीलिए गुरु के द्वारा जो दूसरा जन्म होता है तब ब्राह्मण हो जाते हैं। तो एक नाम तो माता पिता भी रख देते हैं, फिर गुरु भी कोई नाम रख देते हैं, वैष्णव नाम, इसलिए दूसरा जन्म होता है। और द्विज दांत को भी कहते हैं, ये भी दो बार जन्म लेता है, एक बार बचपन का दांत टूट कर दोबारा जन्म लेता है, इसलिए दांत को भी द्विज कहते हैं। पक्षी को भी द्विज कहते हैं और ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं। दो बार जन्म लेने वाले द्विजयी माने पक्षियों के द्वारा और मृग पशुओं को, ऐसे संपन्न सर्वर्तु फल पुष्पाद्यम वनराजी श्रेयान्वितम, और बारहों महीना उनके आश्रम के निकट के जो वृक्ष थे, बारहों महीना फल फूलों से भरे हुए रहते थे, कभी पतझड़ नहीं होता। पतझड़ एक बार में सारा पेड़ का पत्ता झड़ जाए और एकदम सूखा जैसा वृक्ष लगने लगे, बड़ा उदासीन अवस्था होता है, वैसा दृश्य नहीं था। एक एक पत्ता धीरे धीरे झड़ता है और नया नया उगता है, पतझड़ दिखाई ही नहीं देता। तो सर्वर्तु फल पुष्पाद्यम, सभी महीना में फल और पुष्प उनके आश्रम के आसपास दिखते थे। वनराजी श्रियान्वित, वन की सबसे बड़ी शोभा है कि वहाँ का पुष्प फल वृक्ष हरा भरा रहे। जैसे हिमालय में जो वृक्ष होते हैं उनमें पतझड़ नहीं दिखता, एकदम प्लास्टिक के पत्ते जैसे उनके पत्ता होते हैं, साफ स्वच्छ। क्यों? कि हर महीना में दो चार बार बारिश हो जाता है हल्का, कुछ न कुछ बारिश इस महीने में भी, मई जून में भी होते हैं। अभी हम लोग बूढ़ा केदार गए थे तो वहाँ 7 दिन कथा भागवत की हुई, तो वहाँ निकट में घूमने के लिए झरना वरना के पास जाते थे तो वहाँ के वृक्ष इतने साफ स्वच्छ और हरे भरे थे, एकदम हरा भरा, सारा बड़ा बड़ा वृक्ष हरे हरे दिख रहे थे, क्योंकि वहाँ पानी निकलता था, सभी वृक्ष सिंचित थे, सुंदर थे। तो वैसे ही इनके यहाँ बिंदु सरोवर में इनके आश्रम के निकट सब स्वच्छ पवित्र वृक्ष थे, पक्षी और पशु। मत द्विजगणे घुष्टम मत भ्रमर विभ्रमम मत बरही नटाटोपम आह्वायन मत कोकिलम आह्वयन मत कोकिलम। तो मत पक्षियों द्वारा नादित मत वाले पक्षी गुनगुनाते थे और भ्रमर भी पुष्पों का गंध लेकर मधुपान करके मतवाले होकर क्रीड़ा करते थे और गुनगुन 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 गुनगुनाते रहते थे। और मयूरगण मत बरहिण नटाटोपम और आनंद में मतवाले होकर मयूर नाचते थे और आहोयन मत कोकिलम और आनंद में फल खाकर मतवाले कोकिल बारहों महीना बोलते रहते थे। ऐसा नहीं केवल बसंत में, बसंत जैसा वातावरण हमेशा बना रहता था तो कोयल भी अपनी कुहक ध्वनि सुनाते रहते थे। चारों तरफ आश्रम में कोयलों का आवाज, मयूरों का आवाज सुनाई देता था। और वहां के कुछ वृक्षों का नाम भी लिख रहे हैं, मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं, कदम्ब चंपकाशोक करक करजम्बक कुलासनई कदम्ब चंपकाशोक करजम्बक कुलासनई कुंद मंदार कुटजई चूत पोतैरलंकृतम कारण्डवई प्लवई हंसई कुररई जलकुकुटई सारसई चक्रवाकैश्य चकोरई बलगुकुजितम। दो श्लोक एक साथ है, एक श्लोक में वहाँ के वृक्षों का वर्णन कर रहे हैं और दूसरे श्लोक में वहाँ के पक्षियों का। तो वहाँ कदम्ब चंपक अशोक करंज बकुल आसन नामक वृक्ष थे, कदम्ब के वृक्ष थे, चंपक वृक्ष बहुत सुंदर पुष्प, अशोक करंज बकुल वृक्ष, बकुल वृक्ष में भी श्वेत पीला सा फूल लगता है बहुत सुगंधित, और आसन नामक वृक्ष थे। कुंद मंदार कुटजई, कुंद मंदार का कुंज थे बहुत सुंदर सुंदर कुंज, और चूत पोतई अलंकृतम, और फिर नवीन आम वृक्ष भी थे, आम के वृक्ष भी थे उनके आश्रम में, बहुत सुंदर सुंदर पुष्प के फल के वृक्ष थे। और वहाँ के सरोवरों में वृक्षों के ऊपर रहने वाले पक्षियों का नाम ले रहे हैं, कारण्डवई पलवई हंसई कुररई जलकुकुटई सारसई चक्रवई च चकोरई बलगुकुजितम। ते कारण्डव प्लव हंस कुरर जलकुकुट सारस चक्रवाक चकोर आदि पक्षियों का मधुर आलाप वहाँ सुनाई देता था। वो स्थान निनादित था, सब जगह केवल आवाज सुनाई देता था पक्षियों का, बड़े आनंद के स्वर पक्षियों के होते हैं, डिस्टर्ब न, क्यों किसी किसी पक्षी का आवाज थोड़ा भयंकर होता है, नहीं तो बड़े गम बड़े मधुर और बड़े गंभीर आवाज पक्षियों के होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ मधुर आलाप से वह स्थान निनादित था। तथैव हरिणई क्रोडई श्वा विदगवर गवय कुंजरई गोपुक्षई हरभिमर्कई नकुलई नाभिर्भिर्वृतम। वैसे ही और भी पशुओं का नाम रख रहे हैं कि इसके अलावा हरिण बराह सुअर हरिण शलभ गाय हाथी लंगूर बंदर गोपुक्षई हरभी मरकई। तो लंगूर भी थे बहुत बड़े बड़े लंबा पूंछ वाले बंदर, और ये छोटे बंदर भी थे मरकई नकुलई नाभिर्वृतम। और नकुलई एक नकुल जानवर का नाम है, और फिर नाभिर्वृत नाभिर्वृतम का अर्थ है जिसके नाभि में मृग रहते हैं, जिस मृग के नाभि में कस्तूरी रहता है उसको कहते हैं नाभिर्वृतम, कस्तूरी से युक्त मृग। तो इस प्रकार उनके आश्रम के निकट जो वन प्रदेश था उनमें रहने वाले मुख्य मुख्य पशुओं का पक्षियों का नाम मैत्रेय मुनि ले रहे हैं। वहाँ के वातावरण सौंदर्य का वर्णन करने में कभी कभी हम लोग देखते हैं, कहीं लोग सजावट करते हैं, श्रृंगार करते हैं किसी स्थान का, तो बनावटी पशु पक्षी प्लास्टिक का रख देते हैं, प्लास्टिक का कबूतर, मयूर, मोर और भी रखते हैं, बंदर बना देते हैं, हिरण बना देते हैं, वो भी देखने में अच्छा लगता है, कुंज बनाते हैं, प्लास्टिक के फल भी लगा देते हैं। आप लोग देखे हैं वृंदावन में रूप सनातन गौड़ीय मठ है नारायण महाराज का, तो रूप सनातन गौड़ीय मठ के नीचे भगवान का श्री विग्रह है और ऊपर एक कुंज बनाया गया है, सेवा कुंज, एक छोटा सा स्थान में कुंज बनाया गया है और वहाँ श्रीमती राधा रानी के मान मनाते हुए भगवान का फोटो है, चित्रपट है और कुंज के बीच में है और वहाँ के जितनी कुंज में सजावट है सब प्लास्टिक का है, दूब भी प्लास्टिक का और वहाँ के मयूर, बत्तख, कोयल सब प्लास्टिक के, हिरण आदि जो भी, और उसमें फल भी लगाया गया है तो सब प्लास्टिक है, अंगूर आदि सेब सब दिखता है लेकिन देखने में अच्छा लगता है। जब प्लास्टिक के बनावटी चीज इतना अच्छा लगता है तो सचमुच जो होगा वो कितना अच्छा लगता होगा। तो एक विशेष बात कहते हैं कि जंगल में गायें भी रहती थी, स्वाविद गवय कुंजरई, गवय गाय, तो जंगल में रहने वाली एक प्रकार की विशेष गाय है जिसको चमरी गाय कहते हैं या नील गाय कहते हैं, नीली गाय होती हैं, नील गाय, और चमरी गाय के पूंछ बड़ा गुच्छेदार होता है, गुच्छा होता है, उन्हीं गोपूच्छ बालों का बना हुआ चामर भगवत अर्चन में काम आता है। ते भगवान के मयूर पंख का पंखा झलते हैं, इसके बाद एक चामर डुलाते हैं, वो चामर चमरी गाय का पूंछ है, तो बड़े बड़े जंगलों में वनों में पहले बहुत संख्या में वो चमरी गाय, नील गाय आदि मिलती थी, तो भगवत अर्चना में, भगवत अर्चन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद फिर उस तीर्थ में पहुंचकर मनु महाराज क्या देखते हैं, आश्रम के निकट, आश्रम के आसपास का वातावरण, वृक्ष, उस जंगल में रहने वाले पशु पक्षी, वहाँ के स्वच्छ वातावरण, फल पुष्प आदि का दर्शन तो किए, रथ तो वहाँ आया आश्रम तक, इसके बाद आश्रम पर पहुँचे तो अब देखिए मनु महाराज कर्दम मुनि को किस रूप में देख रहे हैं। तीन श्लोक में वर्णन करते हैं, प्रविश्य तत्तीर्थवरम आदिराज सहात्मज ददर्श मुनिमासीनम तस्मिन् हुतहुतासनम विद्योत्मानं वपुषा तपस्युग्र उजाचिरं नातिशामं भगवत स्निग्धा पांगावलोकनात् तद्भयाहृता मितकला पीयूष श्रवणेन च प्रांशुं पद्मपलासाक्षं जटिलं चिरवाससं उपसंश्रित्य मलिनं यथारहणमं संस्कृतं प्रविश्य तत्तीर्थवरम्। उस तीर्थ वर, उस सुंदर आश्रम में पहुंच करके, श्रेष्ठ तीर्थ में पहुँच कर आदिराज सहात्मज अपने अनुगामियों के साथ, मतलब रथ पर जो भी सारथी या पत्नी पुत्री सबके साथ, सहात्मज का मतलब अपने साथ रहने वाले आत्मीय स्वजनों के साथ, जब आदिराज मनु उस तीर्थ राज में प्रवेश किए, बिंदु सरोवर पर प्रवेश किए, तो क्या देखते हैं कि हुत हुतासनम आसीनम तपसी, सुबह के अग्नि में हवन करके, सुबह सुबह मंगला आरती करने के बाद सुबह सूर्योदय के समय हवन किया जाता है, तो कर्दम जी सुबह का कार्यक्रम पूरा कर चुके थे, हवन कर लिए थे और आसीनम तपसी, तपस्या में बैठे हुए थे। चिरम उग्र जुसाम बपुषा, बहुत काल से तपस्या करने के कारण विद्योत्मान भगवतः उनका शरीर बहुत चमक रहा था, बड़ा तेज था, एकदम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किए थे, भगवान में मन लगा हुआ था, भगवान का दर्शन अभी एक दिन पहले किए थे, एक दिन पहले भगवान का दर्शन किए थे, उनकी वाणी साक्षात सुने थे, इसके कारण स्नेह भरी दृष्टि से भगवान उनको निहारे थे। इसलिए कहते हैं स्निग्ध पांगानवलोकनात् च तद्व्यवाहृता मृत कलाप पीयूष श्रवणेन, स्नेह भरी दृष्टि से जो भगवान उनको देखे थे और देखने से उनके उनको जो सुख मिला था उस सुख के कारण इनका हृदय बहुत प्रफुल्लित था। बार बार याद आ रहा था कि भगवान कैसे मुस्कुरा रहे थे, कैसे बात कर रहे थे, और उनके मुखमंडल में जो स्निग्ध मुस्कान था, और इसके साथ साथ वो भगवान अमृत श्रावित वचन के द्वारा जो करदम जिसे बात किए, उनकी एक एक शब्दों में अमृत निकल रहा था, उसका स्मरण करदम जी कर रहे हैं। बार बार याद आ रहा है कि भगवान कैसे बोल रहे थे कि करदम मैं पहले से जानता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पत्नी की व्यवस्था कर चुका हूँ, तुम अगर नहीं भी कहता तब भी कर दिया था, और तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं आऊँगा। ये सब वाक्य तो करदम जी को और आनंदित कर रहा था। सारे 10,000 वर्ष के तपस्या से जो क्षीण शरीर था वह एकदम पुष्ट हो गया भगवान के शब्द सुनकर। इस तरह से करदम मुनि बड़े सुंदर लग रहे थे। और इसके बाद अति क्षाम प्रांशु, बिल्कुल पुष्ट, कोई भी शरीर में झुर्रियां नहीं, कोई चिंता का रेखा नहीं, कोई कमजोरी नहीं, सारा शरीर चमक रहा था, उन्नत था सारा शरीर। और पद्म पलाश साक्षम जटिलम चिरवाससम, कमल पुष्प जैसे नेत्र चमक रहे थे सुंदर, और जटिल केश थे, खूब शैम्पू और साबुन लगाकर साफ नहीं किए थे, जटा बन गया था, वो तपस्या किए थे ना, अभी कोई ब्यूटी पार्लर में सज कर नहीं आए थे कि विवाह करना है, चलो अब पत्नी आने वाली है विवाह करना है तो थोड़ा ड्रेसिंग कर ले फर्स्ट क्लास बन जाए, वैसा नहीं, किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं गए, जटा बना हुआ था और बहुत पुराना वस्त्र चिथड़ा पहने हुए थे, और वो भी कपड़ा का, रुई का, कपास का नहीं, बलकलांबर, जो बलकल आदि पेड़ के छाल आदि मृग छाल आदि पहने हुए थे, और असंस्कृतम मलिनम यथारहणम, उनका शरीर भी अभी कोई साबुन सोडा से वस्त्र साबुन नहीं, कपड़ा साफ नहीं किए थे, देह साफ नहीं किए थे, असंस्कृत देह था, देह में संस्कार नहीं हुआ था, कोई उपटन आदि लगाकर शरीर की गंदगी साफ नहीं किए थे। विवाह के पहले बड़ी तैयारियां होती हैं अपने शरीर को चमकाने के लिए, और रोज जैसा भी रहे लेकिन उस दिन तो स्पेशल सजावट करते हैं, खासकर स्त्री समाज तो पूछिए मत। तो कहते हैं कि ये सब नहीं था, असंस्कृतम मलिनम, असंस्कृत महारत्न के समान यथारहणम, जैसे चमकता हुआ सोना, सोना भीतर से एकदम प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, और ऊपर से मीठी उटी लगकर थोड़ा गंदा हो गया है, लेकिन है महामूल्यवान रत्न। यथारहणम जैसे असंस्कृत महारत्न सोना हीरा एकदम प्योर, ऐसे मलिन मुनिम उपसंग्रितम ददर्श, उपसंसित्य ददर्श, ऐसे दिख रहे थे जैसे चमकता हुआ कोई रत्न हो लेकिन वह धूल में मलिन हो गया, मूल्यवान रत्न हो सोने का, उनके कमल पुष्प जैसे नेत्र तो चमक रहे थे एकदम उन्नत, और शरीर भी भगवान के अमृत बाणी सुनने के कारण उनका शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया था, मुनि के कंधे उन्नत थे और कमल पुष्प के समान सुंदर नेत्र थे, फिर केश में जटा बनी हुई थी, बलकल वस्त्र पहने हुए थे, वृक्ष के छाल पहने हुए थे, एक अपरिमार्जित महारत्न के समान, उनका शरीर मटमैला था, साफ सुथरा नहीं था, और मनु महाराज बिल्कुल निकट से कर्दम मुनि को देख रहे थे, बड़े ध्यान से देखने लगे, यह वही है कर्दम मुनि जिनके साथ मैं एकदम परम सुकुमारी, परम स्नेहवती अपनी प्रिय पुत्री को सौंपने जा रहा हूं, वही हमारे दामाद हैं। ये देखने के लिए, वर अन्वेषण के लिए, जैसे पिता किसी को देखता है, किसी लड़के को अपनी बेटी के लिए, तो प्रथम बार मनु महाराज देख रहे हैं। देखिए कितना विश्वास है मनु महाराज को, एक बार पहले नहीं देखे हैं, डायरेक्ट पुत्री को लेकर आ गए, और ऐसा विश्वास, पहले के लोग धूर्त नहीं थे, एकदम सत्यवादी थे। देवर्षि नारद जब कर्दम जी के गुणों की प्रशंसा किए, तो केवल एक साधु की बात सुनकर देहूति निर्णय कर ली कि उन्हीं से विवाह करना है। मनु महाराज को भगवान डायरेक्ट आज्ञा दिए कि आप अपने बेटी का विवाह कर्दम मुनि से कर दो। तो भगवान कहे हैं तो अब देखने सुनने की कहां सवाल है, और देवर्षि नारद जैसे व्यक्ति प्रशंसा करें तो भांत तो नहीं है, ऐसे मिथ्या पैसा लेकर तो प्रशंसा करते नहीं, झूठ बोलने वाले तो है नहीं, इसलिए देहूति विश्वास कर ली। जो उस समय के सदवाक्यों में विश्वास था, आज के लस्ट मैरिज में वो रस नहीं है, लव मैरिज नहीं है, लस्ट मैरिज, जहां केवल कामुकता ही जिसका बेस है, वहां कोई प्रेम नहीं एक दूसरे से, तो परस्पर साथ रहकर खूब देख सुनकर खूब बातचीत करके दो चार साल एक दूसरे को जान पहचान कर विवाह करते हैं, और छह महीना में डाइवर्स, दो तीन महीना में खत्म हो जाता है। और यहां एक बार भी संग नहीं, प्रथम बार देवति देख रही है, प्रथम बार मनु महाराज देख रहे हैं, प्रथम बार शत्रुपा देख रही है, और बड़े ध्यान से मनु महाराज देख रहे हैं, जैसा है उसी रूप में देख रहे हैं, कोई स्नान नहीं, कुछ नहीं, जटा बना हुआ है, एकदम विरक्त साधु, लेकिन शरीर तेज चमक रहा है महामूल्यवान रत्न की तरह, जैसे कोई कीमती सोना, एकदम फर्स्ट क्लास का सोना, कोई मिलावट ना हो, और वह मलमैठा हो गया हो, क्या कहते हैं उस शब्द को, मटमैला, गंदा हो गया हो, और उसमें धूल जम गया हो, मिट्टी लग गया हो, तुरंत उसको पोछने के बाद चमकने लगेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। वैसे कर्दम जी चमक रहे हैं, मटमैले रत्न की तरह दिख जरूर रहे हैं, लेकिन उनमें तेज दिख रहा है, उनके नेत्रों में जो तेज है, यह देख रहे हैं मनु महाराज। अथो तजम उपायातम निर्देवम प्रणतम पुरः सपरया पर्यगृणात प्रतिनंद्यानुरूपया अथो तजम उपायातम। अब मनु महाराज उनके कुटिया में आए, पर्ण कुटी बना हुआ था, घास की कुटी जहां बैठे हुए थे, पर्णशाला में आए, और ओटजम कुटिया को कहते हैं, अथवा ओटजम उपायातम, वहां पर्णशाला में आकर पूरा प्रणतम निर्देवम, चरण के समीप आकर चक्रवर्ती सम्राट, संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी मनु महाराज, राजर्षि मनु कर्दम जी के चरणों का स्पर्श करते हुए प्रणाम किए। अभी अपनी बेटी को देना है उनको, लेकिन हैं महामुनि, इसलिए ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसलिए मनु महाराज राजर्षि मनु उनको प्रणाम किए, और प्रतिनंद्य अनुरूपया सपरेया, आशीर्वाद के द्वारा उनका अभिनंदन करते हुए अब कर्दम मुनि सत्कार किए, प्रणाम किए जब मनु महाराज, तो आशीर्वाद भी दिए, आशीर्वाद दिए, अभिनंदन किए, उनके योग्य पूजा किए, उनको बैठने के लिए चटाई दिए, और पर्यगृणात, फिर करदम जी यथोचित सत्कार करते हुए उनसे बातचीत करने लगे बाद में। तो जो भी सत्कार का चीज है देना चाहिए, जो आश्रम में उपलब्ध था उनको दिए। यहाँ एक अद्भुत शिक्षा मिलती है कि सम्राट मनु करदम मुनि से भेंट करके उनके चरणों में प्रणाम किए एवं करदम मुनि उनको आशीर्वाद दिए। दोनों को पता है, दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ नहीं है। मनु महाराज को पता है कि अपनी बेटी को देंगे तो हमारा बेटे जैसा हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, और उनको भी पता है, करदम मुनि को भी भगवान बता चुके हैं कि वो अपनी बेटी देंगे, आप स्वीकार कीजिएगा। इनको भी पता है कि मैं इनकी बेटी स्वीकार करूंगा तो ये मनु महाराज हमसे बड़े हो जाएंगे। लेकिन वो तो बाद की चीज है। अभी वर्तमान जो स्थिति है, संपूर्ण विश्व के शासक होकर भी मनु महाराज एक वनवासी तपस्वी को प्रणाम कर रहे हैं, यह एक आदर्श है। अभी ये तपस्वी मुनि है और यहाँ प्रणाम करने का क्या औचित्य है, क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो वो अपने को गृहस्थ मान रहे हैं, घर गृहस्थी में फंसा हुआ दीनहीन अपने को मानकर एक तपस्वी मुनि के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं मनु महाराज। उनके अंदर दीनता है कि हम गृहस्थ हैं, हमसे उत्कृष्ट तपस्वी ये ब्राह्मण हमसे श्रेष्ठ है। और इनके मन में आया कि चलो एक गृहस्थ जब प्रणाम कर रहा है तो अब उसका प्रतिकार न करते हुए आशीर्वाद देना हमारा कर्तव्य है, तो उनका स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम उनके प्रणाम को अस्वीकार कर दें और कहे कि आप महान राजा होकर इस तरह के क्यों कर रहे हो, ये उचित नहीं है, ये शिष्टाचार नहीं है। प्रणाम को स्वीकार नहीं किए, प्रणाम को स्वीकार किए और तदनुरूप प्रतिनंद्य अभिनंदन किए उनके प्रणाम को, और अनुरूपया सपरया उनके अनुरूप उनकी पूजा किए, मतलब उनको आसन दिए, पानी दिए, जो भी व्यवहार करना था उनके योग्य किए। गृहीतारहण आसीनम संयतम प्रणयन मुनि स्मरण भगवदादेशम इत्याह लक्षणया गिरा। तो आसन जल फल आदि सत्कार स्वीकार करके मनु महाराज चुपचाप बैठ गए। उनको दिया गया, पानी दिया गया पीने के लिए, कुछ जंगल में जो फल फूल उनके आश्रम में पहले से उपलब्ध था, कुटिया में भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद के रूप में जो रखे थे उसको दिए उनको। और मनु महाराज जब उनका पूरा पूरा सत्कार स्वीकार कर लिए, मतलब आसन स्वीकार किए, पानी स्वीकार किए, फल भी खा लिए, जब एकदम शांत चुपचाप बैठ गए, आसीनम संयतम, अब मनु महाराज आकर के चुपचाप बैठ गए, तब श्लक्षणया गिरा प्रणयन भगवदादेशम स्मरण मुनि इति आह। तो इस प्रकार मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए, मनु महाराज को प्रसन्न करते हुए, भगवान के आदेश का स्मरण करते हुए करदम मुनि इस प्रकार बोले। करदम मुनि बोलना प्रारंभ करते हैं। देखिए शिष्टाचार ये है कि जो प्रणाम करेगा वह पहले नहीं समाचार पूछेगा, प्रणाम करने वाला प्रणाम करके चुप रहना चाहिए, और बड़े का कर्तव्य है पहले पूछने का, ठीक हो, कहाँ से आ रहे हो, कैसे हो, जो भी, और सब ठीक है, सारा हाल चाल, स्वास्थ्य ठीक है, सब चीज़ पूछ ले, तब छोटा विनम्रता पूर्वक उत्तर देते हुए बाद में पूछ सकता है आप ठीक है ना। ऐसा नहीं कि प्रणाम भी करो और तुरंत पूछ भी दो आप कैसे हैं, ये शिष्टाचार नहीं है। प्रणाम करने वाला को इंतजार करना चाहिए बड़े का आशीर्वाद का या उनके कुशल मंगल पूछने का, तो वो पूछ ले तब उत्तर देते हुए विनम्रता पूर्वक उत्तर देकर कहें आप ठीक हैं ना, बाद में पूछ सकता है। तो मनु महाराज प्रणाम किए, करदम जी उनको आशीर्वाद देते हुए उनका सत्कार करते हुए अब पूछते हैं। करदम जी पूछ रहे हैं और पूछते समय इनके मन में भगवान का आदेश स्मरण आ रहा है, ठीक उचित टाइम पर मनु महाराज आए हैं, रथ आया है, उनकी पत्नी आई है, उनकी बेटी भी आई है, देख रहे हैं, सारा साज समाज हु बहु उसी टाइम पर उपस्थित हुआ है जैसा भगवान कहे थे उसी टाइम पर। तो भगवान का आदेश स्मरण कर रहे हैं, स्मरण भगवत आदेश इत्याह लक्षण आगिरा, भगवान के आज्ञा का स्मरण करते हुए बड़े ही मधुर वाक्य में मनु महाराज को प्रसन्न करते हुए करदम मुनि बोले इति आह इत्याह। नूनम संक्रमणम देव सताम संरक्षणायते बधाय चाशताम यस्त्वम हरे शक्तिरि पालिनी। अब यहाँ करदम जी कुछ फ्लेटरी या कुछ विशेष बातें नहीं कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से एक राजा के गुणों का जैसा वर्णन करना चाहिए वैसा वर्णन करते हुए अंत में उनसे पूछते हैं। तो वर्णन कर रहे हैं कि हे देव, हे पूज्य, प्रणाम कर लेने से ऐसा नहीं कि वो छोटे व्यक्ति हैं। देव कहते नूनम संक्रमणम देव सतम संरक्षणायते, हे देव, हे परम पूज्य, हे आदरणीय, हे महाराज, नूनम ते संक्रमणम, निश्चित रूप से आपका घूमना, आप जो घूम रहे हैं राजधानी से निकलकर, सतम संरक्षणाय, साधु पुरुषों के संरक्षण के लिए होता है। आप जैसे राजा अगर घूमे तो साधुओं की रक्षा की जाती है आपके द्वारा। और असतम बधाय च, और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का बध होता है, जो दुष्ट बदमाश होते हैं अगर राजा घूमने लगे, राजा की बात तो छोड़ो, राजा के सेवक पुलिस घूमने लगे तो चोरी बंद, अपहरण बलात्कार सब बंद, चारों अगर राजा के प्रहरी पुलिस घूमने लगे तो कहीं भी गलतियां नहीं हो पाएंगी। तो राजा घूमता है तो दुष्टों का वध के लिए होता है और साधु पुरुषों की प्रसन्नता के लिए, उनकी रक्षा के लिए। यह तुम हरे पालिनी शक्ति ही, क्योंकि आप भगवान श्री हरि की जगत पालिका शक्ति के स्वरूप हैं। आप राजा हैं ना, आप विष्णु स्वरूप हैं। जगत पालन भगवान की निजी कर्तव्य है, जगत का पालन श्री भगवान करते हैं। जानते हैं जगत की सृष्टि और विनाश का काम भगवान दूसरे को भले दे दिए, लेकिन पालन पर भगवान किसी दूसरे पर भरोसा नहीं किए, स्वयं अपना विभाग संभाले। भगवान जैसा पालन कोई कर नहीं सकता। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक प्रसिद्ध कहावत है, साधु पुरुष लोग बोलते हैं, राम नियन हित दूसर नाही, होइबो करिहन तो ओइसन नाही। अगर किसी का हित करने वाला, किसी की सहायता करने वाला अगर कोई है तो भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। अगर कोई है भी, माता पिता दोस्त मित्र सगे संबंधी बहुत से हितैषी होते हैं, हितगण, लेकिन राम जैसा नहीं। भोजपुरी में नियन माने जैसे, राम नियन हित दूसर नाही, होइबो करिहन तो ओइसन नाही, अगर कोई होंगे भी तो ऐसा नहीं। तो भगवान सृष्टि करने का जिम्मेवारी ब्रह्मा को दे दिए। सृष्टि करना बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं है, संतान उत्पन्न तो लोग कर देते हैं भेड़ बकरी की तरह, लेकिन पालन करना बहुत कठिन काम होता है। कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, कैसे उनको व्यवस्थित किया जाए, यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उनके सुख दुख की चिंता करना ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो यह काम भगवान करते हैं, स्वयं भगवान। संहार विभाग शिव जी को दे दिए, लेकिन पालन विभाग विष्णु करते हैं, खुद भगवान करते हैं। और भगवान इस पालन को अनेक रूपों में करते हैं। भगवान के ही अंशभूत राजा होते हैं, नरेंद्र होते हैं, नरपति होते हैं, जो मनुष्य समाज का पालन करते हैं, विष्णु अंश होते हैं। तब कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप हरे शक्ति ही पालिनी, भगवान की जो जगत पालिनी शक्ति है, जगत पालिका शक्ति, उसी के स्वरूप हैं आप। तो और जगत पालन में बहुत देवताओं का हाथ है, बहुत लोग लगे हुए हैं भगवान की कृपा से। भगवान के शक्ति से जगत का पालन करते हैं। जो अर्केन द्वम द्वग्निन्द्र वायु नाम यम धर्म प्रचेत शाम रूपाणी स्थान आधत से तस्मय शुक्लाय ते नमः। देखिए अब शिष्टाचार किस रूप में आ रहा है। जब भगवान की शक्ति जगत पालिका शक्ति स्वरूप राजन आप हैं तो भगवान का ही प्रतिरूप मनु महाराज हैं, इसलिए मनु महाराज को करदम जी अब प्रणाम कर रहे हैं। कहे जगत पालन में जो चंद्रमा सूर्य कहते हैं सूर्य चंद्र अग्नि इंद्र वायु यम धर्म वरुण का रूप धारण करते हैं, अनेक रूपों में देवताओं के रूप में इंद्र के रूप में जगत का पालन करते हैं, सूर्य के रूप में जगत का पालन करते हैं। देखिए दिन दिन भर 12-12 घंटा सूर्य का प्रकाश मिलता है फ्री, इसके लिए कोई बिल नहीं आया। ये जो बल्ब जल रहे हैं इसका बिल आएगा, लेकिन सूर्य का बिल नहीं आता है, वो फ्री दिया जाता है जगत के पालन के लिए। सबके नाकों तक ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है फ्री, कोई बिल नहीं। थोड़ा सा भोजन बनाने में गैस के लिए कितना भारी पैसा लगता है, देना पड़ता है, लेकिन नाकों तक जो हवा दी जाती है उसका कोई बिल नहीं, फ्री दिया जाता है। चंद्रमा का शीतल चांदनी प्रकाश दिया जाता है, अग्नि के रूप में जो भोजन बनाने में सहायता प्राप्त होता है अग्नि देव के द्वारा, इंद्र के द्वारा बारिश किया जाता है, वायुदेव हवा सप्लाई करते हैं, जमराज धर्म और वरुण आदि का रूप धारण करते हैं भगवान जगत के पालन के लिए। ऐसे विष्णु स्वरूप तस्मय ते शुक्लाय नमः, ऐसे विष्णु स्वरूप आपको शुद्ध सत्व स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। फिर कर्दम मुनि नमस्कार कर रहे हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। न यदा रथमास्थाय जैत्रम मणिगणार्पितम विस्फूर्ज चंडको दंडो रथेन त्रासयन नघान स्वसैन्य चरण क्षूणम बेपयन मंडलम भुवः विकर्षन बृहतिम सेनाम पर्यटन अंशुमानिव तदैव सेतव सर्वे वर्णाश्रम निबंधना भगवत रचिता राजन भीदेरन बत दस्युभि। तीन श्लोक एक साथ है। फिर आगे कहते हैं कि हे राजन, जब आप जयप्रद अनेक रत्नों से खचित ये सुंदर रथ लेकर चलते हैं, अपने घर से निकलते हैं सोने से मंडित रथ को लेकर, तो शत्रुओं का हृदय दहल उठता है। आप जब चलते हैं भयंकर धनुष का यदि टंकार करते हैं, रथेन अघान त्रासयन स्वसैनम चरण क्षूणम भूम मंडलम बेपयन, और आपके रथ की ध्वनि से धनुष के टंकार से शत्रुओं का कलेजा कांप जाता है, और अपनी सेना के पाद प्रहार से भूमंडल को कपाते हुए महती सेना लेकर, अगर आप इस तरह जगत में विचरण नहीं करेंगे, कहते हैं बृहतिम सेना विकर्षण अंशुमान इव न पर्यटसी, यदि सूर्य की तरह आप नहीं घूमेंगे महल में ही बने रहेंगे, तो वर्णाश्रम के अनुसार जो भगवत रचित धर्म है, आपके द्वारा जो मनु समाज के लिए बनाया गया संविधान है, मनु संहिता आदि का ठीक से पालन नहीं हो पाएगा। ये दुराचारी लोग बढ़ जाएंगे, बदमाश चोर उचक्के बढ़ जाएंगे, इसलिए आपका घूमना बहुत कल्याणप्रद है। भगवत रचिता सर्वे सेतव दस्युभि बत भी देरन, ये दुराचारी पुरुषों द्वारा निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा, इसलिए आपका घूमना बहुत जरूरी है, बहुत उचित है। आप निश्चित रूप से जगत के कल्याण के लिए घूम रहे हैं, इसमें हमको कोई डाउट नहीं कि आप क्यों निकल गए, क्यों आ गए, आप निश्चित रूप से जगत के हित के लिए घूम रहे हैं। आपका काम ही है धर्म की रक्षा करना, धर्म के सेतु की रक्षा करना, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, जनता का निगरानी करना पालन करना आपका कर्तव्य है। या स्वाभाविक घूमते हैं, इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अधर्मश्च समेधेत लोलुप पैर व्यंकुशई निभि सयाने त्वयि लोको यम दस्यु ग्रस्तो विनक्षति। आपके निष्क्रिय हो जाने पर ये निरंकुश लोग, जिस पर अंकुश होना चाहिए, अर्थ काम लोलुप मनुष्य जो है, कितने चोर बदमाश, इतने आतंकवाद बढ़ रहा है, चारों तरफ दुष्ट बदमाश बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? लापरवाह राजा के कारण। ये वर्तमान स्थिति यह है कि ऐसे नपुंसक शक्तिहीन शासकों के हाथ में देश की सत्ता है कि चारों तरफ व्यभिचार, अपहरण, हत्या, बलात्कार, जहां सुनो यही न्यूज मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे बदमाश लोग, दस्यु लोग बढ़ जाएंगे। आज की बात नहीं है, जब कड़ा शासन होता है, जब ईमानदार शासक होते हैं, धर्मपरायण होते हैं, तब जगत सुख शांति से रहती है, तब जगत के लोग, जगत की प्रजा बड़ी शांति का अनुभव करते हैं। इस स्थिति में आज जो वर्तमान स्थिति है, यही कहा जा सकता है एकदम निष्कपट भाव से कि बहुत कमजोर लोगों के हाथ में सत्ता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और वे केवल अपने घर में, अपने भवन में पड़े रहते हैं, वे घूमते नहीं हैं। अगर वो घूमते तो इस तरह नहीं होता। उनकी जो शक्ति सेना है वो उनके साथ घूमती, सारे लोग जानते कि लोग घूम रहे हैं, वो तो एकदम निश्चिंत है, इसलिए इतना भयंकर उत्पात हो रहा है, हृदय दहला देने वाले। तो ये अधर्म, अधर्म बढ़ जाएगा। और ये दस्यु ग्रस्त अयम लोक विनक्षति, ये डाकुओं से, बदमाशों से लोक विनाश को प्राप्त करेगा। तो आपका घूमना उचित है, आपको घूमना ही चाहिए, प्रजा के दुख दर्द को सुनना चाहिए, देखना चाहिए, यह उचित काम है, कर्दम जी कह रहे हैं। तथापि, फिर भी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तथापि पृक्षे त्वाम वीर यदर्थम त्वम इहागत, मैं जानता हूँ कि आप अस्वाभाविक नहीं आए हैं, आप स्वाभाविक रूप से घूम रहे हैं, फिर भी हमारे आश्रम पर किस प्रयोजन से आए हैं? तो मनु महाराज से पूछना अपना कर्तव्य समझते। तद वयम निर्वलीके न प्रतिपद्यामहे हृदा, तथापि वीर यदर्थं त्वम इहागतः पृच्छे तत् वयम निर्वलीके न हृदा प्रतिपद्यामहे। हे राजन, हे वीर, मैं आपसे निष्कपट भाव से यह जानना चाहता हूँ, यह पूछना चाहता हूँ कि आप किसी खास प्रयोजन से हमारे आश्रम पर आए? आप स्पष्ट रूप से कहिए, मैं हृदय से उसको स्वीकार करूँगा। जो मेरे लायक सेवा होगी आप जैसे महान राजा के लिए, वो सेवा मैं अवश्य करूँगा। कहते हैं, वयम निर्वलीके न हृदय प्रतिपद्यामहे, मैं आपसे केवल पूछ नहीं रहा हूँ, औपचारिक रूप से नहीं पूछ रहा हूँ, फॉर्मालिटी नहीं है, मैं ओरिजिनलिटी रूप में पूछ रहा हूँ। आप मेरे लिए जो आदेश करेंगे उसको मैं करूँगा, पूरा करूँगा। आप कहिए मेरे आश्रम पर आने का क्या प्रयोजन है? तो भगवान तो बता चुके हैं, लेकिन मनु महाराज के मुख से सुनना है, जानना है। यह वाक्य उनके विवाह की उत्सुकता नहीं है, स्वाभाविकता है। ऐसा नहीं कि मनु महाराज चुपचाप बैठ गए तो कर्दम जी सोचने लगी पता नहीं विवाह की चर्चा करेंगे कि नहीं, हम ही कर देते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान तो कहे हैं तो मनु महाराज भी करेंगे, लेकिन जो स्वाभाविक शिष्टाचार है वह कह रहे हैं। एक राजा के साथ, राजा होने के कारण मनु महाराज का अधिकार था कि अपने देश के किसी भी प्रजा को सेवा में लगा सकते हैं, कुछ आदेश कर सकते हैं। तो मनु महाराज की प्रजा होने के कारण, उनके राज्य में होने के कारण, किसी भी व्यक्ति का कर्तव्य है कि राजा से पूछे हमारे लिए क्या आदेश है। अथवा अतिथि रूप में अचानक उपस्थित हुए हैं तो कुछ अभीष्ट है, कुछ इच्छा है, कुछ आपको चाहिए, यह पूछना स्वाभाविक है। किसी भी गृहस्थ के लिए यह कर्तव्य है, या किसी भी आश्रम में रहने वाले साधु संत महंतों का भी कर्तव्य है कि कोई अचानक आश्रम में आ जाए तो उनका स्वागत करना चाहिए और उसकी इच्छा को जानकर सेवा करना उसका कर्तव्य होता है। आप कुछ विशिष्ट प्रयोजन से आए, आप कैसे आए बताइए। तो यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है, इसके साथ 22वां अध्याय प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि कहते हैं, एवं मा विष्कृता शेष गुण कर्मो दयो मुनिम सवीर्ड इव तम सम्राट उपारतम उवाच। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि एवं आविष्कृता शेष गुण कर्म उदय सम्राट सवीर्ड इव उपारतम तम मुनिम उवाच। तो कर्दम मुनि जो अशेष गुणों के भंडार थे, और फिर एक विशेष बात कहते हैं, एवं आविष्कृता शेष गुण कर्म उदय सम्राट कर्दम मुनि। इस प्रकार जब मनु महाराज के महान गुणों का चर्चा किए, अशेष गुणों और कर्मों की बड़ाई किए, तो उसको सुनकर सम्राट उदय जब किए, गुण कर्म उदय मनु महाराज के कर्तव्य का विज्ञापन किए, वर्णन किए कि आप राजा हैं, आपका कर्तव्य है समाज के लोगों को सुख देना, साधु पुरुषों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना, जगत का पालन करना, आप भगवान विष्णु की जगत पालनी शक्ति स्वरूप श्री हरि हैं, जैसे इंद्र वरुण कुबेर चंद्रमा सूर्य जमराज आदि जगत के पालन में लगे हुए हैं, वैसे आप भगवान की एक शक्ति हैं, आपका कर्तव्य है जगत का पालन करना, स्वाभाविक है आपको घूम घूम कर प्रजा का देखभाल करना इत्यादि। इन गुणों का वर्णन जब किए तो इसको सुन करके सम्राट मनु लज्जित हो गए। यद्यपि इसमें कोई भी बढ़ा चढ़ा कर कुछ नहीं कहे थे, फिर भी अपने गुण को सुनकर एकदम लज्जित हो गए। और सब्रीड इव उपारतम तम मुनि मुवाच, और वो कर्दम मुनि उनके गुणों का वर्णन करके चुप हो गए। उनको नमस्कार किए और उनसे आज्ञा मांगे कि आप मेरे लिए जो आदेश करेंगे उसको मैं निष्कपट भाव से पूरा करूँगा, मेरे लिए कुछ आदेश हो तो कहिए। इतना कहकर जब कर्दम मुनि चुप हो गए तब मनु महाराज को बड़ा संकोच होने लगा अपने गुण को सुनकर, और संकोच के साथ ये बोलना प्रारंभ किए। किससे बोलना प्रारंभ किए? उपारतम तम मुनि मुवाच, बोलना जो बंद कर दिए थे उस मुनि से बोलने लगे। अब चुप हो गए कर्दम जी, अब मनु महाराज बोलते हैं। तो देखिए, सत्पुरुषों का एक स्वभाव है, सज्जन पुरुष का, कि अपनी प्रशंसा सुनकर के लज्जित होते हैं, एक शिक्षा मिलती है। हालांकि कोई भी फालतू प्रशंसा नहीं है, सब उनके अंदर है, लेकिन अपना गुण भले दुनिया वालों को अच्छा लगे लेकिन साधु पुरुषों को अच्छा नहीं लगता है, सुनकर लज्जित हो जाते हैं, प्रशंसा सुनकर लज्जित हो जाते हैं। परमार्थ परायण कर्दम मुनि से व्यवहारिक बातें करनी है, इस कारण भी मनु महाराज को लज्जा आ रही है, अनुभव हो रहा है। आचार्य लोग कहते हैं, टीकाकार लोग कहते हैं कि मनु महाराज को लज्जा क्यों आ रहा है, तो दो कारण बताते हैं। एक तो अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जा अनुभव कर रहे हैं कि अरे मैं इस जिस रूप में होना चाहिए वैसा नहीं हूँ, देखिए साधुओं की रक्षा करना सज्जनों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है लेकिन मैं लापरवाह हूँ, जितना घूमना चाहिए उतना नहीं घूमता, कुछ लज्जित अनुभव कर रहे हैं। अथवा ऐसे परमार्थ निपुण परम पद पर स्थित है, बिल्कुल निवृत्त परायण साधु पुरुष के सामने एक विवाह का प्रस्ताव रखना है, ऐसे विरक्त सन्यासी के सामने अपनी बेटी को देना है, इसको कैसी कहें, कौन सी भूमिका बनावें, अब यह सोचकर मनु महाराज लज्जित हो रहे हैं कि इतने उन्नत बुद्धिमान विद्वान पुरुष के सामने मैं ये प्रस्ताव रखूंगा कि आप विवाह कीजिए, इसके लिए भी उनको लज्जा अनुभव हो रहा है। परमार्थ परायण कर्दम मुनि से व्यवहारिक बातें करनी है, कैसे करें कैसे करें। कभी कभी किसी साधु पुरुष से महात्मा से गुरुजनों से कुछ व्यवहार की बातें करनी पड़ती है। संसार का एक ऐसा स्वभाव है कि कभी कभी अपने गुरुजनों से भी कुछ व्यवहारिक बातें करनी होती है, 10 बार दिमाग पर प्रेशर आता है, कहूँ नहीं कहूँ, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, क्या करूँ, पता नहीं इनको सुनकर अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन कहना तो जरूरी है। अब ये बड़ी भारी समस्या हो जाती है, कहना पड़ेगा, अगर नहीं बताता हूँ बाद में इनको पता चलेगा तो कहेंगे देखो मुझसे नहीं कहा, कैसे कहें क्या करें, लेकिन संकोच होता है। व्यवहार की बातें अध्यात्म विकसित पुरुष के सामने कहने में संकोच होता है, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, कैसे कहें। एकदम इतने उन्नत अध्यात्म पद पर स्थित व्यक्ति के सामने सांसारिक चर्चा करना पड़ेगा तो बड़ी विनम्रता के साथ कहना पड़ता है। तो देखिए मनु महाराज कह रहे हैं, मनुर्वाच ब्रह्मा सिजत स्व मुखतो जुष्मानात्म परिप्सया छंदो मयस्तपो विद्या जोग जुक्ता नलम पटान। अब मनु महाराज थोड़ी भूमिका बना रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं। मनु महाराज बोलते हैं छंदोमय ब्रह्मा आत्म परिप्सया तपो विद्या जोग जुक्तान अलंपटान जुष्मान स्वमुखता अश्रित। कहते हैं वेद स्वरूप श्री भगवान अपने पालन के लिए वेद का प्रवर्तन किए, अपनी जानकारी के लिए, अपने विषय में ज्ञान देने के लिए, छंदोमय ब्रह्म आत्म परिप्सया अपने विषय में जानकारी देने के लिए तपो विद्या जोग जुक्तान अलंपटान जुष्मान स्वमुखता अस्थित। तो यह वेद किसको दिए, तपस्या उपासना अष्टांग योग से युक्त स्त्री धन आदि की आसक्ति से रहित वेद प्रवर्तन योग आप ब्राह्मणों को अपने मुख से उत्पन्न किए, जिस मुख से भगवान वेद उत्पन्न किए, भगवान के मुख से वेद प्रकट हुआ, उन्हीं मुख से आप ब्राह्मणों को भी भगवान उत्पन्न किए और आप लोगों को जिम्मेवारी दिए वेद का प्रवर्तन करने का, वेद का पाठ कीजिए और समाज में भी वेद की शिक्षा दीजिए, आप ब्राह्मणों का कर्तव्य। अच्छा, तो ब्राह्मण का कर्तव्य भगवान के द्वारा ब्राह्मणों की उत्पत्ति, वेद की उत्पत्ति की चर्चा मनु महाराज किए, ऐसा क्यों किए। तो आचार्यों का कहना है कि अकस्मात स्वकन्या प्रदान प्रसंग के प्रतिकार की आशंका से, अचानक अगर हम कह दें मन में आ रहा है मनु महाराज की कि मैं अपनी बेटी को लेकर आया हूँ आप इनको स्वीकार कीजिए, और अचानक कह दें क्या बोल रहे हो, तुम हमारी अवस्था को नहीं देख रहे हो, मैं विवाह करने के मूड में बैठा हूँ इस जंगल में, मैं तपस्या करने वाला, अभी हवन कुंड पर हवन करके सुबह सुबह बैठा और आते ही तुम मुझको ऐसा लंपट काम ही देख रहे हो क्या, ऐसा क्यों कह रहा है। मनु महाराज डर रहे हैं कि कहीं प्रतिकार न कर दें, इसलिए प्रतिकार की आशंका से मनु महाराज सर्वप्रथम ब्राह्मण और क्षत्रिय के संबंध को दर्शा रहे हैं कि हमारे में और आप में संबंध क्या है, नाता क्या है, हम दोनों भगवान के स्रोत से उत्पन्न हुए हैं, आपका काम है वेद का प्रवर्तन करना, वेद की मर्यादा का पालन करना, और हमारा काम है जनता की सुरक्षा देना। तो अपने विषय में बतलाते हैं, तत्प्राणायासिजस्यास्मान् दोसहस्रात् सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमङ्ग प्रचक्षते। तत्प्राणाय अस्मान् सहस्रपात् दोसहस्रात् सहस्रात् असिजत्। उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए जो वेद की रक्षा करते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं, वेद का प्रवर्तन करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के रक्षा के लिए हम क्षत्रियों को भगवान अपनी भुजा से उत्पन्न किए। तो सहस्त्रपाद भगवान अपने सहस्त्र भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किए, मुख से ब्राह्मण और क्षत्रियों से भुजा, भुजाओं से क्षत्रिय, भुजाओं से क्षत्रियों को उत्पन्न किए। तस्य ब्रह्म हृदयम क्षत्रम अंग प्रचक्षते, इसी से भगवान के ब्राह्मण को हृदय और क्षत्रियों को भुजा कहा गया है। ब्राह्मण भगवान के हृदय हैं और मुख से प्रकट होते हैं, और क्षत्रिय जगत रक्षा के लिए उनके भुजा से उत्पन्न हुए हैं। अतो यन्योन्यम आत्मानं ब्रह्म क्षत्रम च रक्षतः रक्षति यस्माभ्ययो देव स यह सद सदात्मक अतः ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों एक दूसरे द्वारा अपनी रक्षा करते हुए वेद शिक्षा द्वारा सन्मार्ग का रास्ता बतलाते हैं। प्रवृत्त करके ब्राह्मण क्षत्रिय की रक्षा करता है, क्षत्रियों को वेद मर्यादा में रखते हैं ब्राह्मण उपदेश करके, और क्षत्रिय ब्राह्मणों को सुरक्षा देता है, जीविका प्रदान करना, दुष्टों का संहार करना, ये सब करते हैं। इस प्रकार क्षत्रिय ब्राह्मण की रक्षा करता है और ब्राह्मण सन्मार्ग देकर, सद्मार्ग अच्छा रास्ता बताकर क्षत्रियों की रक्षा करता है। और यह सद सदात्मक अव्यय स भगवान ही रक्षते स्म। लेकिन हे कर्दम जी, इस रूप में हम क्षत्रिय और ब्राह्मणों को यह नहीं सोच लेना चाहिए कि हम जगत की रक्षा करने वाले क्षत्रिय हैं और आप जगत को शिक्षा देने वाले ब्राह्मण हैं, हम दोनों के मूल में भगवान हैं, यह कह रहे हैं। सद सदात्मक अव्यय स भगवान ही रक्षति स्म, जो कार्य रूप में होने पर भी निर्विकार रहते हैं वह भगवान ही सबकी रक्षा करते हैं। हमारे अंदर जो बल है, आपके अंदर जो ज्ञान है, वो भगवत शक्ति है। हम दोनों एक ही पावर हाउस से संयुक्त हैं। यह पंखा चल रहा है उसी पावर हाउस से और बल्ब भी जल रहा है उसी पावर हाउस से। क्रिया दो रूप में है, प्रकाश दे रहा है, हवा दे रहा है, और उसी पावर हाउस से फ्रिज भी चलता है, उसी से हीटर भी। विपरीत पावर देता है बिजली, बिजली से फ्रिज चलता है, बर्फ भी बनाता है, और उसे अग्नि भी उत्पन्न, हीटर भी जलता है, एक ही पावर हाउस से। तो हम लोग एक स्रोत से हैं, मतलब दोनों एक स्वरूप हैं। इस संसार में जीव परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते हैं। गांव में लोग निश्चिंत सोते हैं, अगर वन में भेज दिया जाए तो नींद नहीं लगेगा रात भर। अकेले किसी को घोर जंगल में छोड़ दिया जाए तो भयंकर जंगल में डर लगेगा, पता नहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए, कोई अजगर ना आ जाए, कोई भूत प्रेत ना आ जाए, और कोई आतंकवादी ना आ जाए, कुछ गड़बड़ हो सकता है। लेकिन यहाँ सब निश्चिंत हैं, क्यों? कि एक दूसरे पर सबको भरोसा है, हम लोगों के बीच में है। सब लोग कपड़ा नहीं बनाते लेकिन पहनते सब लोग हैं, कुछ लोग बनाते हैं। सब लोग अन्न उत्पन्न नहीं करते लेकिन भोजन रोटी सबको मिलता है, परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। सब लोग दवा नहीं बनाते लेकिन बीमार होने पर दवा मिल ही जाती है। तो एक परस्पर एक दूसरे का पालन होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण की रक्षा राजा, प्रजा की रक्षा प्रजा सैनिक आदि के रूप में राजा की रक्षा। राजा जरूर सैनिकों का वेतन देता है लेकिन सैनिकों से राजा की रक्षा होती है, बॉडी गार्ड रक्षा, पैसा उनका रक्षा राजा करता है, उनको पेमेंट करके, पैसा देकर। लेकिन सैनिक अपने हथियार से राजा की रक्षा करता है परस्पर। तो इसी प्रकार मनुष्य पशुओं की, पशु मनुष्य की। हम गाय बैल की रक्षा करते हैं तो गाय हमारी रक्षा करती है, हमको दूध देती है, खेती करते हैं। तो परंतु वास्तविकता यह है कि कोई किसी का पालन नहीं करता, सबके मूल में है श्री भगवान, वे सबका पालन करते हैं और दूसरे से करा लेते हैं। तो इस प्रकार तव संदर्शना देव छिन्ना में सर्व संशया यत् स्वयं भगवान प्रीत्या धर्मा अरिरक्षिसो तव संदर्शनात इव में सर्व संशया छिन्या। आपके दर्शन से ही हमारा जो भी शंका है, जो भी संशय है, सब कुछ नष्ट हो गया। अब मैं किसी संशय में नहीं हूं, क्योंकि स्वयं भगवान प्रीत्या अरिरक्षिसो धर्मम आह, क्योंकि बिना पूछे आप ही प्रसन्नता पूर्वक मेरे धर्म को बता रहे हैं, मेरे कर्तव्य को बता रहे हैं। यद्यपि मुझे अपना कर्तव्य आप साधु पुरुषों से पूछना चाहिए, आपका कर्तव्य हमें धर्म का उपदेश करना, और हमको हमारी हमारा कर्तव्य है आपसे धर्म की जिज्ञासा करना, मेरा क्या कर्तव्य है। आमी के ने अमार जारे तापत्र, मैं कौन हूँ, मुझे क्यों संसार दुख दे रहा है, तीन प्रकार के ताप क्यों जला रहा है। यह नहीं जानी अमार के मन हित है, अपनार हिताहित किछु ही न जानी, मेरा हित किस में है मैं नहीं जानता, ये साधु पुरुष बताते हैं। तो आप कृपा करके बिना पूछे बतला रहे हैं। दिष्टया में भगवान दृष्टो दूरदर्शो यो कृतात्मनाम दिष्टया पादरज अस्पिष्टम शिणा में भवतः शिवम। यह अकृतात्मनाम दूरदर्श सह भगवान में दृष्टया दृष्ट, जो अवशीकृत चित लोगों के लिए दुर्लभ दर्शन है, जिसका चित बस में नहीं है, जो दुनिया भर के भोगों में जिसका चित लगा है, ऐसे लोगों के लिए आपका दर्शन दुर्लभ है। वह आप सौभाग्य से मेरे द्वारा दृष्ट हैं, दिख रहे हैं, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और फिर कह रहे हैं कि भवत शिवम पाद रज में दृष्टया शिष्णा अस्पृष्टम, आपका मंगलमय चरण रज मेरे सौभाग्य से सिर से स्पष्ट हुआ है, मैं कृपा करके आप मुझे दर्शन दिए और मैंने सौभाग्य प्राप्त किया कि अपने सिर से आपके चरण को स्पर्श किया, आपके पवित्र चरण रज मुझ में लगा है, मेरे सिर में लगा है। दिष्टया त्वया अनुशिष्टो हम कृतस्यानुग्रहो महान अपावृतई कर्णरंध्रई जुष्टा दिष्टो सतीर गिरह। अपने सौभाग्य से ही मैं आपके द्वारा आतिथ्य धर्म में आज शिक्षित हुआ, कैसे एक अतिथि की सेवा करनी चाहिए आपके द्वारा मैं सीखा। आपके आश्रम में कोई प्रसाधन नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं है, कोई बहुत फर्नीचर सोफा सेट बेड नहीं है, कोई महल एसी एयर कंडीशन आदि नहीं है, फिर भी आपने जो स्वागत किया वो हमको सिखाया कि कैसे एक अतिथि का सत्कार करना चाहिए। आपने हमको अनुग्रह किया त्वया अनुशिष्ट, त्वया महान अनुग्रह कृत, आपका महान अनुग्रह मैं प्राप्त किया हूँ। अपाकृतई कर्णरंध्रई उषति गिरह दृष्टया जुष्टा, बड़े सौभाग्य से आपके कमनीय वाणी, आपके मुखारविंद से निकली हुई शिक्षा, एक राजा के कर्तव्य को मैं खुले कानों से सुना, आपने वर्णन किया, महान अनुग्रह कृत। अपाकृतई कर्णरंध्रई उषति गिरह दृष्टया जुष्टा, आप कृपा करके हमको उपदेश किए, आपकी कमनीय वाणी बड़े भाग्य से सुनने को हमको मिला। सभवान दुहित्री स्नेह परिक्लिष्टात् मनो मम श्रोतु मर्हसि दीन से श्रावितम कृपया मुने। अब एक लंबी भूमिका के बाद धीरे धीरे अपने प्लेटफार्म पर आ रहे हैं स्वयंभू मनु। हे मुने, ऐसे सुप्रसिद्ध कृपा सिंधु, कहते हैं सम मुने सह भवान दुहित्री स्नेह परिक्लिष्ट आत्मन दीनस्य मम श्रावितम कृपया श्रोतुम अर्हसि। हे कृपा सिंधु, हे दयालु, हे मुनिवर, पुत्री स्नेह से व्याकुल चित मुझ दीन के निवेदन को आप कृपा पूर्वक सुनने का कष्ट करें। मैं अपनी सयानी बेटी के चिंता से ग्रसित हूँ, मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है। सयानी बेटी हो जाने पर पिता किस प्रकार प्रेशराइज रहता है, यहाँ देखिए किस तरह उस पर प्रेशर है विवाह करना है। पता नहीं विवाह करने वाले क्या कहेगा, ये मन में भय भय बना रहता है, पता नहीं उसका क्या डिमांड होगा, कब रिजेक्ट कर देगा, बहुत फ्लेटरी करना पड़ता है, कैसे कहना है, क्या कहूँ कि हमारी बात एकदम ठीक जगह पर बैठे, स्वीकार कर ले। इसके लिए मनु महाराज देखिए कैसे बोल रहे हैं, श्रोतु मर्हसि दीनस्य, मुझ दीन की बात आप कृपा करके सुनने का कष्ट कीजिए। श्रोतु मर्हसि श्रावितम कृपया मुने, मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। किस विषय में? तो दुहित्री स्नेह परिक्लिष्ट आत्मन, पुत्री स्नेह से व्याकुल मेरा चित है, मैं अपने बेटी के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। हाँ कहिए, क्या कहना है? तो कह रहे हैं प्रिय व्रतो तान पदो स्वसेयम दुहिता मम, यह जो मेरे सामने उपस्थित है यह मेरी बेटी है। एक विशेषता, चक्रवर्ती सम्राट भूमंडल के राजा मनु महाराज बोल रहे हैं मेरी बेटी है, और दूसरी बात प्रियव्रत और उतानपाद की बहन है, मेरे पुत्र हैं प्रियव्रत उतानपाद, सब महान सम्राट हैं, साधारण इस बेटी नहीं है, इसके भाई का नाम है प्रियव्रत और उतानपाद, प्रियव्रत और उतानपाद के बहन है और मेरी पुत्री है। अनविक्षति पतिम युक्ता, यह अपने अनुरूप पति खोज रही है। वयशील गुणादि भी, उम्र में, शील में और गुण में अपने समान पति ढूंढ रही है। तब वयस, शील आदि गुणों से युक्त पति चाहती है, बहुत उम्र का अंतर नहीं होना चाहिए, अपने उम्र के अनुसार पति। कहते वयस शील गुणादि भी, वय में और शील, शील कहते हैं जो गुण सदाचार है, जो सत्पुरुषों का आचरण है, शिष्टाचार है, विनम्र हो, साधु पुरुष हो, सज्जन हो, शराबी, नशा वाला, मांस खाने वाला, व्यभिचारी, ऐसा कोई भी स्त्री किसी कामी लंपट पुरुष को पसंद नहीं करती, उसके अंदर शील होना चाहिए। जैसे कोई भी पुरुष व्यभिचारिणी कुलटा स्त्री पसंद नहीं करता, जिसका अनेक पुरुषों से संबंध हो, ऐसे स्त्री को कोई पुरुष नहीं चाहता, वैसे किसी लंपट पुरुष को कोई स्त्री नहीं चाहती। कामुकता एक अलग चीज है, लेकिन लंपटता बड़ा भयंकर चीज है। तो ऐसे लंपट पुरुष नहीं, शील, शीलवान होना चाहिए, उसके सामने एक मर्यादा होनी चाहिए कि वो अपने पत्नी के अतिरिक्त किसी स्त्री से संबंध ना रखे, यह शील हो। तो शील चाहिए, गुण चाहिए और अपने समान वयस चाहिए। अब लड़की 18-19 साल की है और पति 40-45 साल का, ऐसा नहीं चलेगा, बहुत कम अंतर होना चाहिए, 2-3 साल मुश्किल से। तो वयस शील गुणादि भी, अपने उम्र के अनुसार, अपने शील गुण के अनुसार युक्तम पतिम अनविक्षति, यह पति चाहती है। अच्छा, साफ साफ नहीं कह रहे हैं कि आपको चाहती है, अब भूमिका बनाते हुए कह रहे हैं। यदा तू भवतः, यदा तू भवतः शील सूत रूप वयो गुणान अश्रेणोद नारदा देशा तया शीत कृत निश्चया, साफ साफ कह दिए। अब कितना देर तक भूमिका बनाएंगे। यदा तू नारदा ऐसा, जब से नारद मुनि से सुनी है भवता शील सूत रूप वय गुण गुणान आश्रणोत, जब से आपके चरित्र, आपके शील, आपके गुण, वयस, तदा भवता शील श्रुत रूप वय गुणान अश्रणोत, तदा प्रवृत्ति त्वयि एव कृत निश्चय आसित। जब से देवर्षि नारद के मुख से आपके गुणों का वर्णन सुनी है, तब से आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। यही कहना था, लेकिन इतने देर तक मनु महाराज धीरे धीरे इस बात पर आए, कह रहे हैं कि आपके विषय में हमारे यहाँ आने वाले अनेक संत महात्माओं में देवर्षि नारद आते थे, नाम रख दिए हैं अश्रणोद नारदा देशात त्वया सित कृत निश्चया। जब से देवर्षि नारद के मुख से सुनी है आपके गुणों के विषय में, आपके उम्र के विषय में, आपके निश्चय के विषय में, तब से यह निश्चय कर ली है कि यह मेरे योग्य पति हैं, ऐसा यह निश्चय कर चुकी है। तत्प्रतीक्षा द्विजाग्रेयम, तत्प्रतीक्षा द्विजाग्रे द्विजाग्रे माम श्रद्धयो प्रहिता मया सर्वात्मनानुरूपाम ते गृह मेधीषु कर्मसु। हे द्विजाग्रय, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे विप्र श्रेष्ठ, यज्ञ मेधिषु कर्मसु सर्वात्मना ते अनुरूपम मया श्रद्धया उपहृतम तत् इमाम प्रतीक्षा। तो एक सवाल है ना करदम जी के तरफ से कि ठीक है ये तो हमारे रूप को हमारे गुण को हमारी महिमा को नारद जी से सुन ली और यह तो चाहती है कि मुझको पति बना ले, पति के रूप में निश्चय की है, लेकिन यह हमारे अनुरूप हो तब ना, दोनों तरफ से फिट होना चाहिए ना। यह इसके अनुरूप तो मैं हूँ लेकिन क्या ये हमारे अनुरूप है? तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि हे विप्रश्रेष्ठ, गृह मेधिषु कर्मसु सर्वत्मना ते अनुरूपम मया श्रद्धया उपहृतम। यह गृहस्थोचित धर्म को करने में सब प्रकार से आपकी अनुकूल होगी, आप जो चाहेंगे वो करेगी। मेरे द्वारा श्रद्धा से आपके पास लाई गई है, ऐसा नहीं कि मेरी पुत्री है और बस इसके मन में है कि करदम को पति बनाऊं लेकर आ गया। मैं भी विचार किया हूं, यह आपकी हर प्रकार से सेवा करेगी। गृह मेधिषु कर्मसु सर्वात्मना ते अनुरूपम, यह है स्त्री की सबसे बड़ी योग्यता कि पति के ठीक ठीक अनुरूप रहे। वह अपना कोई भी प्लानिंग, कोई भी इच्छा, कोई भी विचार न रखे, अनुरूपम रहे, एकदम अनुरूपम अनुरूप रहे। और मया श्रद्धया उपहृतम, और मैं लाया हूँ, मैं कोई ऑर्डिनरी थर्ड क्लास का व्यक्ति चीटिंग करने वाला नहीं हूँ। जगत प्रसिद्ध एक राजा कह रहे हैं मनु महाराज, मैं आपके साथ कोई धोखा नहीं दूंगा कि आपके अनुरूप न हो और विवाह कराकर बढ़ा चढ़ाकर विवाह कर दिया और आपको दिक्कत हो गया, ऐसा नहीं होगा। मैं इसको विश्वास के साथ लाया हूँ, श्रद्धया श्रद्धया उपहृतम, केवल मैं जन्मा दिया हूँ, मेरी बेटी है, इस ममता में नहीं लाया, इसको बढ़िया से जांच लिया हूँ, ये आपके लायक है, एकदम फिट आपके लायक है, इसलिए मैं इसको लाया हूँ। तत् इमाम प्रतीक्षा, इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ आप कृपा करके इसको स्वीकार कीजिए, अतः आप इसे स्वीकार कीजिए। इतनी बात। अब दो श्लोक में एक विचित्र बात कह रहे हैं, सभी साधकों को बड़ी सावधानी से सुनना चाहिए क्या कह रहे हैं, खास करके ब्रह्मचारियों को तो विशेष सावधानी से इस दो श्लोक सुनना चाहिए। तो दो तीन श्लोक एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मनु महाराज हैं, मानव समाज को हर बात हर क्षण शिक्षा देना है। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य काम रक्तस्य किम पुनः। कहते हैं कि बिना उद्यम के, बिना परिश्रम के स्वतः जो भोग अविलसित वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसका प्रतिकार तो विरक्त भी नहीं करते। विरक्त लोग भोग चाहते नहीं, लेकिन अगर उनके अभिलषित भोग अपने आप प्राप्त हो जाए तो बड़े बड़े विरक्त भी उसको ठुकरा नहीं पाते हैं। और अपि नहीं शस्यते, और उनको विरक्त के लिए भी वो शोभा की बात नहीं है। कहते हैं अपि नहीं शस्यते, उनको ठुकराना शोभा की बात नहीं है। और काम रक्तस्य पुनः किम, और जिसके मन में विषय भोग की लालसा है उसको भोग मिल जाए तो उसको ठुकराने की कहाँ सवाल है। विरक्त पुरुषों को भी एक बार सोच लेना चाहिए कि अगर मैं इसको ठुकरा रहा हूँ तो इसका परिणाम फिर बुरा हो सकता है। इसका फिर उत्तर दे रहे हैं कि अगर विरक्त ठुकरा दे तो क्या दिक्कत है, उसको तो चाहिए नहीं तो ठुकराएगा ही। तो कहते हैं हाँ, ठुकराते समय विचार कर लेना चाहिए, गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए, कोई जल्दीबाजी और देखा देखी में नहीं। कहते हैं यह उद्यतम अनादित्य, अगर जल्दीबाजी में स्वतः प्राप्त विषय भोग को तिरस्कार किया और किनाशा अभियाचते छियते जब जसह स्फीतम मानवा चावज्ञया हतः। कहते हैं कि जो स्वतः प्राप्त, जो मनुष्य स्वतः प्राप्त विषय भोग का तिरस्कार करता है और इसके बाद फिर उसके मन में कदाचित विषय भोग की लालसा जग गई और कृपण अर्थात नहीं देने वाले व्यक्ति के पास अगर पुनः याचना करता है, दोबारा उस विषय भोग की लालसा करता है, किनाशम अभियाचते, अगर वह याचना किया तो स्फीतम तजस छीयते मानम च अवगया हत, तो जो निर्लोभता आदि उसका सद्गुण था, विरक्ति संन्यास बहुत बड़ा जस परम विरक्त का जो गुण फैला हुआ था, एक क्षण में उसका जस समाप्त हो जाता है और उसका मान समाप्त हो जाता है, वो समाज में उपेक्षित हो जाता है और वो अपमान के कारण विनष्ट हो जाता है, कहीं का नहीं रह जाता। इसलिए तिरस्कार करते समय ठोस निर्णय लेना चाहिए। अगर उचित समय पर कोई विवाह का ऑफर आता है तो विरक्त व्यक्ति को भी एक बार सोच लेना चाहिए क्या करना है, ब्रह्मचारी को भी सोच लेना चाहिए कि अगर मैं टाइम पर 30 वर्ष के अंदर विवाह नहीं कर रहा हूं तो कहीं 50 के बाद करने की बात ना आ जाए, नहीं तो सारा जस चला जाएगा, सारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। मनु महाराज कह रहे हैं यही होता है, जो लोग बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं देखा देखी उनको अपमान के आग में जलना पड़ता है, कहीं का नहीं रह जाते। 45 वर्ष, 50 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष पर भी विवाह करने वाले मिले हैं। तो ऐसे अवस्था में जब विवाह करते हैं तब तो मनु महाराज कहते हैं कि उनका फैला हुआ जस, निर्लोभ, निष्काम, विरक्त, संन्यास आदि का सारा सद्गुण छीण हो जाता है और उसका मान भी दूसरे द्वारा किए गए अपमान से विनष्ट हो जाता है, कहीं समाज में आदर नहीं होता। ऐसे बड़े बड़े लोग ठोस निर्णय नहीं ले पाते और दृढ़तापूर्वक निर्णय नहीं लेने के कारण वो गिर जाते हैं। शुरू में तो विरक्ति दिखाते हैं लेकिन बाद में गिर जाते हैं और गिरने के कारण बहुत अपमान होता है, वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। इसलिए और आपके विषय में भी मैं कुछ न्यूज सुना हूँ। मनु महाराज कह रहे हैं कि अहम त्वा श्रृण्वन विद्वन, हे विद्वन, मैं आपके विषय में सुना हूँ कि आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं हैं, निष्ठापूर्वक निर्णय लेकर कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, भीष्म प्रतिज्ञा आपकी नहीं है, आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं है, विवाहार्थम समुद्यतम, आप अपने पिता की प्रसन्नता के लिए विवाह करना चाहते हैं, ऐसा मैं सुना हूँ। अतस्तम मुपकुर्वाण प्रत्यम प्रतिग्रहण में, आप विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं, आप अपनी योग्य पत्नी चाहते हैं, मैं ऐसा सुना हूँ। गृहस्थ जीवन स्वीकार करने के पूर्व तक ही आप ब्रह्मचारी हैं। दो तरह के ब्रह्मचारी होते हैं, एक गृहस्थ आश्रम के पूर्व 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता, सभी गृहस्थों को करना चाहिए, बेस कंप्लीट होना चाहिए, मजबूत, गुरुकुल में जाकर शिक्षा लेना चाहिए 25 साल तक, और इसके बाद पहले लिया जाता था, अब तो स्टैंडर्ड 21 आ गया है, थोड़ा घट गया 4 साल, तो 21 साल के बाद अवश्य विवाह कर लेना चाहिए विवाह करने वाले को, तो उस समय ट्रेनिंग लेना चाहिए गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का, इसके बाद गृहस्थी में प्रवेश कर सकता है। और दूसरा ब्रह्मचारी होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो विद्यार्थी जीवन में ही निर्णय ले लेता है कि मुझे गृहस्थी में प्रवेश नहीं करना है, तो सीधे वो ब्रह्मचारी से संन्यास में चला जाता है। और एक मार्ग है कि ब्रह्मचारी से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से संन्यास। तो कुछ साल स्त्री और बच्चों के साथ रहना होता है, फिर इसको गृहस्थ धर्म कहते हैं, इसके बाद स्त्री के साथ बच्चे से काम की जिम्मेवारी से अलग होकर, चाहे तो स्त्री के साथ अथवा स्त्री से अलग वानप्रस्थ की शिक्षा ले। वानप्रस्थ के टाइमिंग है कम से कम 1 साल, तो 12 साल, फिर ट्रेनिंग ले ले, इसके बाद फिर संन्यास में प्रवेश करें। तो ये एक क्रम थोड़ा सा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, तब संन्यास। संन्यास तो सबको लेना चाहिए, लेकिन कुछ नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं जो ब्रह्मचारी से डायरेक्ट संन्यास लेते हैं। तो आप वैसा नहीं हैं, अतः जब आप विवाह करेंगे ही करने का निर्णय है ही, तो मेरे द्वारा दी गई कन्या को भार्या के रूप में स्वीकार कीजिए, ये आपके योग्य है, हर तरह से आपके अनुरूप है, मेरी बेटी को स्वीकार कीजिए। और यह नहीं कह सकते कि ये ब्राह्मणी नहीं है, ये क्षत्राणी है, ब्राह्मण का अधिकार है ब्राह्मणी कन्या से विवाह करे, अथवा क्षत्राणी से भी कर सकता है, क्षत्रिय कन्या से। तो मैं क्षत्रिय हूँ, राजा हूँ, राजकुमारी से विवाह कीजिए, यह सब तरह से आपकी सेवा करेगी। तब कर्दम मुनि बोलते हैं, इनकी भी बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप सुनकर दंग हो जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहे हैं। कह रहे हैं ऋषि रुवाच, बाढ़म अहम उदो उद्वो ढुकाम उद्वोढुकाम बाढ़म उद्वो ढुकाम अप्रत्ता च तवात्मजा आवयोरो अनुरूपोसौ वाद्य वैवाहिको विधि आद्य वैवाहिको विधि। ऋषि उवाच, बाढ़म अहम ओ ढुकाम, आप सत्य कहते हैं, वास्तव में मैं विवाह करना चाहता हूँ। कहते हैं ठीक कह रहे हैं, बाढ़म अहम, बाढ़म ठीक कह रहे हैं, वास्तव में मैं विवाह करना चाहता हूँ, अहम उदोढ़ु काम, मैं विवाह करना चाहता हूँ। तब आत्मजा त अप्रता, और आपकी पुत्री भी किसी के द्वारा वचनबद्ध नहीं है, या मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं कही है कि मैं विवाह करूँगा, कोई बॉयफ्रेंड के साथ घूमकर नहीं आई है, इसलिए किसी अन्य को आपकी पुत्री बागदान नहीं की जा चुकी है, ना आप किसी को कहे हैं विवाह करने के लिए, ना यह किसी को अपना फ्रेंड बनाई है, अतः अनुरूप आवयो असौ, अतः एक दूसरे के योग्य हम दोनों का यह संबंध उचित है, आद्य वैवाहिक विधि अनुष्ठेयम, यह प्रथम प्रस्ताव है मेरे साथ, ना आप ठीक बोल रहे हैं ना, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, यह मेरे साथ ही प्रस्ताव है कि मेरे अतिरिक्त और किसी के साथ प्रस्ताव था, नहीं नहीं प्रथम बार आपके साथ प्रस्ताव है, और यह आपके अतिरिक्त किसी पुरुष में मन नहीं लगाई है, जब से आपका गुण वर्णन सुनी है तब से आप को ही प्रसन्न कर ली है। तो विवाह की अनेक पद्धतियां हैं, विधियां हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास का विवाह वह है जिसमें कन्या का पिता किसी योग्य वर को अपने यहाँ निमंत्रित करे और उसे अपनी कन्या अर्पित करे, यह फर्स्ट क्लास विवाह है। और कर्दम ऋषि इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि देहूती ने अपना चित्त अन्य किसी को अर्पण नहीं की है, यदि किसी स्त्री का चित्त अन्य पुरुष में है तो ऐसे व्यभिचारिणी से विवाह करने वाला व्यक्ति जीवन भर दुख में पड़ा रहता है। कर्दम मुनि कह रहे हैं कि अच्छी बात है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी पुत्री मुझे ही चाहती है, ये बहुत अच्छी बात है, तो मैं जरूर इसको स्वीकार करूँगा। और काम स भूया नरदेव तेस्या पुत्र्या समामनाय विधौ प्रतीत क एव ते तनयाम नाद्रियेत स्वयैव कांत्या क्षिपतिमिव श्रियम। कामस भूयान नरदेव तेस्याः पुत्र्याः समामनाय विधौ प्रतीतः क एव ते तनयाम नाद्रियेत स्वयैव कांत्या क्षिपतिमिव श्रियम। हे नरदेव, हे राजन, अस्याते पुत्रा कामम समामनाय विधौ प्रतीत भूयात्, आपकी इस पुत्री का मन प्रसन्न वेद विधि से जो निष्ठा है, जो सौंदर्य है, स्वया एव कांत्या श्रियम क्षिपति इव ते तनयाम कह एवं न आद्रियत। देखिए कर्दम जी की बात, दोहरी बात आप सुनकर चकित हो जाएं, जरा ध्यान से सुनिए। अभी उस पत्नी का उस स्त्री की प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, और तुरंत एक विरोधी बात बोलेंगे, कह रहे हैं कि आपकी स्त्री, आपकी पुत्री ऐसे वेद में निष्ठा रखती है, वेद की मर्यादा का पालन करती है, अच्छी बात है कि किसी पुरुष के साथ इसका संबंध नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण बात है, पर पुरुष में किसी दूसरे पुरुष में इसका मन नहीं है, एक बात। और दूसरी बात है कि अपनी कांति से, अपने सौंदर्य से भूषण की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, जो गहना पहनी है वो गहना तो इसके सौंदर्य के सामने तिरस्कार को प्राप्त हो रहा है। कुछ ऐसा होता है कि लोग अपना डेकोरेशन करके ब्यूटी पार्लर में सज कर गहना पहन कर तो अपने को सुंदर दिखाते हैं, लेकिन इसके सौंदर्य के सामने इसका श्रृंगार फीका पड़ रहा है, इसमें तो कुछ भी सुंदर व्यक्ति में कुछ भी डाल दो सुंदर लगेगा। तो ये आभूषण से भूषित नहीं हो रही है, बल्कि भूषण ही इसे भूषित हो रहा है, इसका जो गहना है वो तिरस्कृत हो रहा है इसके शोभा के सामने, एक दूसरी बात। और तीसरी बात कि आप जैसे सार्वभौम सम्राट की बेटी है, ससुराल हो तो इतने बड़े घराने में, इतने बड़े व्यक्ति जहां हमारा ससुर होंगे, कौन व्यक्ति ऐसे विवाह को तिरस्कार करेगा, कौन नहीं चाहेगा ऐसा विवाह। तीन महत्वपूर्ण बात कहे कि देखिए, मुख्य रूप से दो बात, एक कि वेद की मर्यादा का पालन करने वाली है, मेरे अतिरिक्त किसी पुरुष में मन नहीं लगाई है, इसकी फर्स्ट क्वालिफिकेशन। और दूसरा है कि इसके अंदर जो सौंदर्य है, कोई भी पुरुष सुंदरी स्त्री चाहता है, इसके लिए इसके सौंदर्य के सामने जो आभूषण है वो तिरस्कृत हो रहा है, इसका सौंदर्य ही अपने आप में इतना सुंदर है कि किसी गहने और कपड़े से इसके श्रृंगार की जरूरत नहीं है, अपने आप में सुंदरी है। और यही नहीं, एक और विचित्र बात कहते हैं कि मैंने ऐसा सुना है, इसके विषय में सुप्रसिद्ध न्यूज है, सारे टीवी चैनल और सारे अखबार में निकला हुआ था, इसी के विषय में एक सूचना मुझको मिली है, पहले मैं सुन चुका हूँ। यम हर्म पृष्ठे कोणदंग्रि शोभाम विक्रीडतिम कंदुक बिह्वलाक्षिम विश्वा वसून्यर्पतस्त्वभिमानात् विलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेता। कह रहे हैं कि जब अपने महल के छत पर, आपके छत के ऊपर जब आपकी यह बेटी मुखरित नूपुरों से, अपने चरणों में नूपुर पायजेब पहनी थी और उससे उसके चरण झलंकृत हो रहे थे और वहाँ गेंद उछालते हुए छत पर खेल रही थी अकेले, ऐसे पुष्प लेकर फूल का गेंद या जो भी गेंद हो, गेंद को उछालकर और ऊपर मुंह करके उसको पकड़ना चाहती थी, चंचल नेत्रों से गेंद को पकड़ती थी, कभी इधर कभी उधर खेल रही थी, उसी समय एक गंधर्व, विश्वावसु गंधर्व विमान से आकाश में जा रहा था, अचानक उसकी दृष्टि इसके मुखमंडल पर पड़ गई, वो दरवाजे से देखने लगा इसके सौंदर्य को, जब गेंद पकड़ने के लिए ऊपर मुंह की तो विमान से देख लिया। तो मूर्ख गंधर्व थोड़ा सा स्पीड कम करके देख लेना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं देखा, वो देखने के चक्कर में उस विमान से गिर पड़ा। तो जिसके सौंदर्य के सामने विश्वावसु गंधर्व विमान से नीचे गिर पड़ा था, ऐसे विश्व सुंदरी पत्नी को मैं क्यों नहीं स्वीकार करूंगा, जो मुझे स्वयं पति बनाना चाहती है, जिस जो अप्सराओं के साथ रहने वाला, स्वर्गीय अप्सराओं के साथ, उर्वशी आदि के साथ रहने वाला गंधर्व, स्वर्ग की सुंदरियों के साथ, वैसा गंधर्व भी आपकी पुत्री के सम्मोहवश विमूढ़ चित होकर, कहते सम्मोह विमूढ़ चेता विश्वावसु स्यात् विमानात् न्यपतत्, विश्वावसु विमान से गिर पड़ा था जिसके सौंदर्य को देखकर, वही देहूति मुझे पति बनाना चाहती है, तो मैं क्यों नहीं इसको स्वीकार करूंगा, अवश्य स्वीकार करूंगा। इस तरह से विवाह का अनुमोदन कर रहे हैं मनु महाराज के सामने कर्दम जी। ताम प्रार्थयन्तिम ललना ललाम, असेवित श्री चरणैरदृष्टाम वत्सा मनोरुच पद स्वसारम को नानुमन्यत बुधो भी को नानुमन्यत बुधो भी आताम ललना ललाम असेवित श्री चरणै अदृष्टम। कहते हैं कि ललनाओं के भी ललाम भूषण स्वरूप श्री लक्ष्मी की चरण सेवा से हीन लोगों द्वारा जिनका दर्शन करना कठिन है वो है देहूति। देहूति का दर्शन इतना आसान नहीं है। आपकी पुत्री का दर्शन तो वही कर सकता है जो पतिव्रता शिरोमणि ललना ललाम, ललना कहते हैं स्त्रियों को, सुंदरी स्त्रियों को, ज्योति स्त्रियों को ललना कहते हैं। तो ललनाओं के भी ललाम, उनके सौंदर्य, उनके भूषण सबसे सुंदरी, सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठा है लक्ष्मी। जिन लक्ष्मी के चरण सेवा के बिना देहूति का दर्शन नहीं हो सकता। कहते हैं ललना ललाम असेवित श्री चरणई अदृष्टम। बिना लक्ष्मी जी के कृपा से जिस देहूति का दर्शन कर पाना कठिन है। मनोवत्सम स्वसार अभियातम प्रार्थयंतिम ताम कबुध न अनुमन्यत। वही मनु महाराज की पुत्री अपने आप मेरे आश्रम पर आई है और मुझको पति बनाने की इच्छा कर रही है, प्रार्थना कर रही है, उस देहूति को कौन ऐसा बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति है जो नहीं स्वीकार करेगा? अवश्य स्वीकार करेगा। तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ, निश्चित रूप से स्वीकार करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ फिर एक विशेष बात कहते हैं, ठीक विपरीत बात, कि मैं इसको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं लेकिन एक शर्त के साथ। अरे अब क्या शर्त है? इतनी प्रशंसा कर दिए इसके रूप का, सौंदर्य का, इसकी महिमा का, और फिर शर्त लगा रहे हैं। कहते हैं लेकिन मनु महाराज मैं आपकी बेटी को स्वीकार एक शर्त पर करूंगा। इतने देर तक जो आपकी पुत्री की गुण का, रूप का, सौंदर्य का प्रशंसा करता रहा तो आप मत भ्रम कर लीजिए कि मैं इसमें आसक्त हो जाऊंगा। बस अपने पिता की आज्ञा पालन भर मेरा काम है। जब ही मैं इसे संतान प्राप्त करूंगा तेव इसको छोड़कर विरक्त हो जाऊंगा। अब सुनिए तमाशा। कहते हैं अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो ब्रिभियादात्मनो में अतो धर्मान पारमहंस्य मुख्यान शुक्ल प्रोक्तान बहुमन्ये विहिंसान। अतः मेरे शरीर से जो च्युत वीर्य जब तक यह धारण नहीं कर लेगी अथवा जब तक गर्भवती नहीं हो जाएगी तब तक ही इसके साथ रहूंगा। जब ही मेरा वीर्य धारण करेगी, गर्भवती होगी, उसके बाद मैं परमहंस आश्रम में प्रधान रूप से पालनीय भगवत कथित हिंसा सुन भागवत धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा। मैं तो भीतर से सन्यासी हूँ, ऊपर से केवल पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए विवाह करना चाहता हूँ। संतान जब प्राप्त होंगे, संतान माने 10-20 नहीं, प्रथम संतान के बाद ही मैं छोड़ दूंगा। तो मैं इस पारमहंस धर्म, भागवत धर्म का ज्यादा महत्व देता हूं इस वर्णाश्रम धर्म से। भजन करता हूं, भजन में मेरा मन लगा है। ये तो केवल औपचारिक है विवाह, फॉर्मालिटी है, ओरिजिनलिटी नहीं है। ओरिजिनलिटी तो भगवत भजन है। ये सब धर्म का पालन करने के बाद भी अगर भजन नहीं किया जाए तो व्यक्ति नरक में चला जाएगा। चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वधर्म करियाउ से ही रौरव पड़ी मजे। तो गृहस्थ जीवन में अपना पराया का भेद बना रहता है। क्या दोष है, आप क्यों नहीं गृहस्थ धर्म में रहेंगे? तो कहते हैं कि इसमें हिंसा रहता है, एक दूसरे को सताना, परिवार का पालन करना, कुटुंब का पालन करना, धन का संग्रह करना, परिवार में राग करना, और जो परिवार के प्रति कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो क्रोध करना। ऐसी स्थिति में भगवत स्मरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। इसलिए कर्दम मुनि सब कुछ छोड़कर सर्वोपरि भाव से भगवान का भजन करना चाहते हैं। हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम बनम गतो जद हरिमाश्रयेता, इस घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं को छोड़कर वन में जाकर भजन करना है। प्रहलाद महाराज कहते हैं स्वधर्मान सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। जानते हैं धर्म का क्या अर्थ है? मोटा मोटी समझने लायक अर्थ है धर्म माने कर्तव्य। धर्म का मतलब कर्तव्य, और धर्म अनेक प्रकार के हैं जिसमें मुख्य धर्म दो हैं, और दो धर्म के अंदर अनेक धर्म है। एक धर्म को कहते हैं नित्य धर्म और दूसरे को नैमित्तिक धर्म। एक को नित्य और दूसरे को नैमित्तिक। तो नित्य धर्म आत्मा का धर्म है, आत्मा नित्य है उसका धर्म नित्य है, और उसी नित्य धर्म को जैव धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, भगवत धर्म कहते हैं, भागवत धर्म कहते हैं। वही नित्य धर्म ही जैव धर्म है, जीव का धर्म, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। ममई वांसो जीव लोक जीव भूत सनातन। जब जीव सनातन है तो उसका कर्तव्य भी सनातन है, उसका धर्म भी सनातन है। और दूसरा है नैमित्तिक। नैमित्तिक का मतलब निमित्त से किसी कारण से धर्म का पालन करना पड़ता है, मतलब मजबूरन झेलना पड़ता है धर्म। वो जीव का धर्म नहीं है, लेकिन शरीर मिल गया तो शरीर को पालन करना है, भोजन जुटाना है, कपड़ा जुटाना है, दवा जुटाना है, ये उसकी मजबूरी है, उसको झेलना पड़ता है निमित्त। और इसी नैमित्तिक धर्म के अंदर वर्णाश्रम है। एक विचित्र ध्यान देने लायक बात कि अगर आप बचपन में विद्यार्थी हैं तो आपका धर्म है स्कूल जाना, स्कूल के शिक्षकों की बात मानना, पढ़ाई लिखाई करना। अगर आप टीचर हो गए तो धर्म बदल गया, अब पढ़ना नहीं है पढ़ाना है, ये धर्म परिवर्तनशील है। ब्रह्मचारी हैं तो अलग धर्म, गृहस्थ बन गए तो अलग धर्म, अब गृहस्थी में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा, वो धर्म बदल जाता है। वानप्रस्थी हो गए तो अलग धर्म, सन्यासी हो गए तो अलग धर्म। मतलब एक धर्म अस्थाई है, एक परिवर्तनशील है। नित्य धर्म किसी काल में किसी स्थान से नहीं बदलता, वरना अमेरिका में, भारत में और स्वर्ग में, सत्यलोक में, वैकुंठ में एक ही जैसा रहता है, उसको कहते हैं नित्य धर्म। काल परिस्थिति से नहीं बदलता, बचपन में, बुढ़ापा में, जवानी में, वो एक ही धर्म का पालन किया जाता है, उसको नित्य धर्म। और जो काल परिस्थिति से बदलते हैं उसको नैमित्तिक धर्म। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इन नैमित्तिक धर्मों के चक्कर में मत पड़ो, सर्वधर्मान परित्यज, उसको छोड़ना ही पड़ता है तो छोड़ दो। माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ, यह है नित्य धर्म। तो इन धर्मों को छोड़ने से पाप लगेगा? हाँ थोड़ा मोड़ा लगेगा, टेंशन मत लो। अहम तो सर्व पापे भो मोक्षी श्यामी मा सुच, मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम सोचो मत। तो आजकल के गृहस्थ तो मरते दम तक गृहस्थी के पचड़ में पड़े रहते हैं और जीवन का लक्ष्य खो देते हैं। करदम मुनि के चित्त में भगवत भक्ति का इतना महत्व समाया हुआ है कि महत कुलोत्पन्ना सर्वश्रेष्ठा सुंदरी संतान प्राप्ति के बाद छोड़ देंगे, यह बात कह रहे हैं। प्रत्येक गृहस्थ को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। स्त्री केवल केवल संतान के लिए है, विषय भोग के लिए नहीं। सब तरह से भगवान का भजन ही श्रेष्ठ कर है, सर्वश्रेष्ठ है। जब हम लोग भागवत का प्रवचन करते हैं तो सुनने वाले जानते हैं क्या कहते हैं? ये विरक्तों का प्रवचन है, ये तो सन्यासियों के लिए प्रवचन है, हम गृहस्थों के लिए नहीं है। मजेदार बात थे, लोग नहीं कहते। इन लोगों की बात तो सुनने से आदमी सन्यासी हो जाएगा। अरे हम भागवत की बात कहते हैं ना, हम गृहस्थ की बात करते हैं ना सन्यास की बात कहते हैं। हम परमहंस संहिता का प्रवचन करते हैं। परमहंस संहिता किसको कहते हैं? हंस एक पक्षी है, वो दूध में से जलीय पदार्थ छोड़ देता है और उसके तात्विक अंश को खाता है हंस। और परमहंस उसको कहते हैं जो इस संसार में अच्छाई बुराई से भरा हुआ जगत है उसमें बुराइयों को बिल्कुल छोड़कर केवल अच्छाई ग्रहण करता है। तो ऐसे परमहंसों के लिए भागवत है, इसमें विषय भोग और कपट नहीं है, चीटिंग कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा ऐसा नहीं चलता है। तो यतो भवद विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परम प्रमाणं भगवान अनंत। तो जिससे यह विचित्र विश्व उत्पन्न हुआ है, जिनमें प्रलय में लीन हो जाता है और जिनमें इस समय अवस्थित है, ऐसा प्रजापतीनां पति भगवान अनंत परम महिम प्रमाणम कहते हैं, वही भगवान प्रजापतियों के पति मेरे परम प्रमाण हैं, मेरे लिए प्रमाण है, अर्थात भगवान की आज्ञा मेरे लिए पालनीय है, पिता आदि की आज्ञा नहीं। महिम प्रमाणम भगवान अनंत परमम महिम प्रमाणम का क्या भाव है, कहते हैं वही भगवान ही मेरे लिए परम प्रमाण है, भगवान अनंत भगवान विष्णु। तो कहते हैं आप पिता की आज्ञा से क्यों मुकर रहे हैं, पिता की आज्ञा सृष्टि करना है और आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि पहला वीर मतलब जब धारण करेगी तभी मैं छोड़ दूंगा, पहला संतान प्राप्त करके मैं छोड़ दूंगा, तो ये तो आपकी पिता की आज्ञा नहीं है। यहाँ तो एक से इक्कीस होने का आशीर्वाद दिया जा रहा है, जितना ज्यादा संतान उत्पन्न करो उतनी अच्छी बात। दक्ष प्रजापति कितना संतान प्राप्त किए जानते हैं, 11,060, इसलिए उनको दक्ष कहा गया, काबिल संतान, काबिल प्रजापति, और 11,000 पुत्र साधु बन गए। बेचारे उत्पन्न तो किए लेकिन एक भी विवाह नहीं किए, 10,000 पुत्रों को नारद जी उपदेश किए सब विरक्त बन गए, और फिर 1,000 उत्पन्न किए उनको भी नारद जी एक मिनट में विरक्त बना दिए, 11,000 लड़के सन्यासी बन गए। तो दक्ष प्रजापति बड़ा निराश हुए और ब्रह्मा जी से कहे कि ये क्या हो रहा है, ये नारद कर क्या रहा है, हम सृष्टि करते जाते हैं विरक्त बनाता जा रहा है। तो कहा कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, अपना काम कर रहा है, वो साधु है उपदेश करेगा ही, तो अब एक काम करो, अब लड़की उत्पन्न करो, लड़कियों के पास नारद नहीं जाएगा। तब 60 कन्या उत्पन्न किए दक्ष प्रजापति, और उन्हीं कन्याओं से सारा जगत भर गया, बड़े बड़े प्रजापतियों से विवाह किया गया, जिसमें थोक रूप में 27 जो चंद्रमा के साथ ब्याही गई और 17 कश्यप जी विवाह किए। इस तरह से अलग अलग जगह विवाह करके 60 कन्याओं से सारा जगत भर गया है। उन्हीं के पुत्री हैं दीति अदिति आदि, देवताओं की माँ दैत्यों की माँ सब हुई। तो इस प्रकार भगवान अनंत हमारे प्रमाण हैं, हम उनके अनुसार चलेंगे। ठीक है, अब देर होने लगा और मेरी इच्छा थी कि कुछ श्लोक 7 श्लोक अभी कहना है और इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, इसे चलिए कल कहेंगे। ठीक, हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।